प्रातः क्लास चल रहा था, एक चार 1967 शनिवार को पांचवें पेज की पहली लाइन में बात चल रही थी। तुम बच्चों को यही खास बतानी है कि शिव बाबा कौन है। कौन है शिव बाबा? गॉड का परिचय देना होता है ना। अंग्रेजी में कहते हैं गॉड, जी ओ डी, जी माने जनरेटर, ओ माने ऑपरेटर, और डी माने डिस्ट्रक्टर, खराश। हिंदी में कहते हैं त्रिमूर्ति शिव। क्या कहते हैं? त्रिमूर्ति शिव। उसकी यादगार में त्रिमूर्ति हाउस बनाते हैं। हाउस माने घर। किसका घर है? त्रिमूर्ति हाउस, तीन मूर्तियों का घर। तो क्या तीन कमरे अलग अलग बनाते होंगे? हैं? एक घर है, घर एक का है, घर परिवार एक का होता है या दो चार का होता है? एक का होता है। तो नाम देते हैं त्रिमूर्ति हाउस। फिर यादगार नाम देते हैं त्रिमूर्ति रोड। रोड माने रास्ता। क्या? जिंदगी जीने का अच्छे से अच्छा रास्ता, उसका नाम दिया है त्रिमूर्ति रोड। तो एक का रास्ता अच्छे से अच्छा होगा बताया हुआ, या दो चार तीन बताएंगे तो अच्छा रास्ता होगा? हैं? एक बताएगा तो अच्छा रास्ता, और दो चार आठ बताएंगे तो रास्ता जरूर गलत हो जाएगा। तो सवाल ये है कि वो त्रिमूर्ति शिव जिसे कहा जाता है, वो रास्ता बताने वाला एक है या तीन तीन है? है? एक है। फिर तीन मूर्तियां कह दी, जैसे तिवाटा होता है, एक रास्ता इधर से आया, एक इधर से आया, एक इधर से आया, तीन रास्ते जहां मिले तो नाम देते हैं त्रिमूर्ति रास्ता। ब्राह्मणों की जिंदगी में एक खास संस्कार होता रहा है, वो संस्कार जब तक नहीं होता तब तक पक्का ब्राह्मण उसे नहीं मानते। कौन सा संस्कार? है, हाँ, जिससे कहते हैं द्विज। द्वि माने दूसरा, ज्या माने जन्म, अर्थात दूसरा जन्म। जिसका दूसरा जन्म होता है उसे कहते हैं सच्चा सच्चा द्विज ब्राह्मण। अगर दूसरा जन्म नहीं हुआ मलमूत्र वाला ही जन्म हुआ तो उसे ब्राह्मण नहीं कहेंगे। ब्राह्मण कब कहें? जब द्विज दूसरा जन्म हो। तो जो दूसरा जन्म होता है उसमें क्या करते हैं, तीन धागे यज्ञोपवीत के यूं डाल देते हैं, तीन धागे, और उन तीनों धागों के ऊपर एक गांठ बांध देते हैं। ये भी किसकी यादगार है? ये भी उसी एक की यादगार जिसका नाम है त्रिमूर्ति शिव। क्या? तीन सूत्र माने तीन ज्ञान के धागे। ब्रह्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, शंकर का द्वारा दिया हुआ ज्ञान, फिर विष्णु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, और तीनों मिलकर के एक में इकट्ठे हो जाएं, गांठ बन जाए तीनों की, तब कहते हैं त्रिमूर्ति धागा तीन नहीं एक जगह मिल गया। ऐसे नहीं कि टेवाटे पर कोई खड़ा हो उससे रास्ता पूछा जाए तो ब्रह्मा का सूत्र वाला बताए इधर जाओ, विष्णु का सूत्र वाला बताएगा इधर जाओ, और शंकर के सूत्र वाला बताएगा नहीं इधर जाओ, तो ठिकाने पहुंचेगा है। तो ये तीन धागे जो यज्ञोपवीत के हैं, जिसका नाम रखा गया यज्ञ उपवीत। यज्ञ माने जिस यज्ञ में स्वाहा करते हैं, बड़े से बड़ा यज्ञ है रुद्र ज्ञान यज्ञ, रुद्र जो है वो रौद्र रूप धारण करने वाले को कहा जाता है। ज्ञान यज्ञ का नाम क्या है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। विनाशी या अविनाशी? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। और शुरू किसके द्वारा हुआ है? रुद्र के द्वारा शुरू हुआ, जिसने आरंभ से ही रौद्र रूप धारण किया है वो रुद्र। जैसे बाबा कहते हैं ना तुम्हारा जो यज्ञ आरंभ हुआ तो उसमें स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई, तो जो विनाश करने का काम है पुरानी परंपराओं का विनाश, पुरानी धारणाओं का विनाश, पुराने पुराने धर्मों का विनाश, पुरानी पुरानी राज्य परंपरा का विनाश, माने जो कुछ भी पुरानापन है उस पुरानेपन का विनाश करने की ताकत दुनिया में किसी को नहीं हुई। जैसे धर्म पिताएं आए उन्होंने अपना धर्म तो स्थापन कर दिया, लेकिन जो पुराना धर्म चला आ रहा था उसका विनाश नहीं किया, तो एक जो आ रहा था उसके साथ दूसरा जोड़ दिया। तीसरा धर्म पिता आया बुद्ध, उसने बौद्ध धर्म जोड़ दिया। तो अनेकता बढ़ती गई कि एकता आएगी है, अनेकता आ गई। अनेकता आएगी तो लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं होगा। एक धर्म था, एक राज्य था दुनिया में, एक ही भाषा थी, एक ही कुल था, तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। देवताएं देवताओं की दुनिया में, स्वर्ग में सब बड़े सुख से रहते। फिर देखो क्या हो गया, जैसे जैसे अनेक धर्म बढ़ते गए, जैसे जैसे उन धर्मों के आधार पर अनेक प्रकार के कर्मकांड बढ़ते गए, जैसे गीता में लिखा है ना, धर्म क्षेत्रे कर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्रे धर्म के क्षेत्र में अनेक प्रकार के धर्म हो गए। जैसे मुसलमान हैं, अपने धर्म के आधार पर उन्होंने कर्मकांड बनाए कि भाई जब आदमी मरता है तो उसके शरीर को गाड़ देना चाहिए, ये कर्मकांड बनाए दिया। जबकि वो जानते थे कि पहले से एक कर्मकांड चल रहा है हिंदुओं में, भारतवर्ष में, क्या शरीर छोड़ते थे तो वो जलाते थे। भारत की पुरानी परंपरा तो यही है। उन्होंने कहा नहीं, इस बात को हम नहीं मानेंगे, जलाना अच्छी चीज नहीं है। जला दिया वो तो बहुत खराब कर दिया। अरे जलाना नहीं है, खत्म नहीं करना है, उसको रखना है। क्या रखना है, क्यों रखना है? इसलिए रखना है कि हम देह थे, जब पैदा हुए तो हम क्या थे, देह थे। जब हम हैं ही देह तो उसको खत्म क्यों कर रहा। इसलिए आदमी मरता है तो उसकी देह को रख दो। देह है उसको रख दो, खत्म मत होने दो। उनका कहना है कि जब कयामत होगी तो अल्लाह ताला आकर के उस कब्र में से उसको जगाएंगे और उनके शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब कयामत होगी, विनाश होगा इस दुनिया का, तो कब्रों के अंदर से भूत प्रेत बनकर के वो आत्माएं जाग उठेंगे। क्या अल्लाह ताला के आने तक पड़ी रहेंगी, लेकिन जैसे ही अल्लाह ताला आएगा वो भूत प्रेत बन करके जाग खड़े होंगे, जिंदा हो जाएंगे। ऐसी मान्यता बनाई। अब वास्तव में ये मान्यता है कहां की? मुसलमानों में ये जो मान्यता बनी कि मुर्दे को, डेड बॉडी को गाड़ करके सुरक्षित कर दो, वास्तव में जब भगवान इस सृष्टि पर आता है, जिस भगवान को वो अल्लाह मियां कहते हैं, तो जो मुस्लिम धर्म की आत्माएं हैं, जो इस बात को समझती ही नहीं कि हम ज्योतिबिंदु आत्मा हैं, अविनाशी आत्मा है, उनका देवान खत्म ही नहीं होता, कुछ न कुछ रहेगा जरूर। इसलिए उनका कहना है कि आत्मा है या नहीं है, हो भी सकती है, रूह को मान लेते हैं, लेकिन देह भी अविनाशी है। तो वो देह को भूल नहीं पाते, इसलिए अविनाशी कहते हैं। अभी भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है, बता रहा है कि तुम देह नहीं हो, तुम क्या हो? आत्मा हो। आत्मा अगर हमारा विनाशी है, तुम्हारी देह ये विनाशी है, लेकिन उनमें देहभान इतना ज्यादा होता है दूसरे धर्म वालों में कि वो अपने देह के भान को भूल ही नहीं पाते। इसलिए उनका अनुभव ये कहता है कि नहीं, रूह अगर अविनाशी है तो देह भी अविनाशी है, इसलिए देह को सुरक्षित करके रखना चाहिए, उसको जलाना नहीं चाहिए। ये फाउंडेशन कहाँ पड़ा है? संगम युग में ये फाउंडेशन पड़ता है उनमें, दूसरे धर्म वाली आत्माओं। इसके अलावा कुछ भारतवासी आत्माएं भी होती हैं, जो देवताएं थे, जो अपन को आत्मा समझते तो हैं, लेकिन आत्मा की उस ऊंचाई की स्टेज पर ना नहीं जा पाते, स्मृति के आधार पर कि 16 कला संपूर्ण आत्मा बन जाए। मना कुछ न कुछ देहभान रह जाता है। तो वो आत्माएं जो हैं कमजोर होने के कारण, कमजोर देवात्मा, 16 कला नहीं, कितने है? 15.5 कला, 15.5, 14 कला, माने कम ताकत वाली आत्मा, कम ज्ञान की रोशनी धारण करते हैं, पूरा ज्ञान धारण नहीं करते। आत्मा का पूरा ज्ञान अगर धारण कर ले तो वो भी अपन को अजर अमर अविनाशी मान ले, समझ ले, फिर कितने जन्म लेंगे? है? है? पूरे 84, पूरे चक्र में चक्र लगाने वाली आत्मा बनते, लेकिन वो पूरा ज्ञान लेते ही नहीं, पूरी प्रैक्टिस करते ही नहीं कि हम ज्योतिबिंदु आत्मा है। इस बात पर उनको पक्का निश्चय नहीं होता कि हम अविनाशी आत्मा है। देहभान नहीं खत्म होता, इसलिए अविनाशी आत्मा नहीं बन पाते। आत्मा की निरंतर स्मृति में नहीं टिक पाते, तो वो ही कमजोर आत्माएं जो हैं, जब द्वैतवादी द्वापर युग आता है, दूसरे धर्म के धर्म पिता आते हैं, उनके साथ मिक्स हो जाते हैं, उनकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं, और प्रभावित होकर के वो उनकी परंपराओं को मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, देह को जलाना नहीं चाहिए, बिल्कुल खत्म नहीं करना है, क्या करना है? देह भी अविनाशी है, उस देह को, देहभान अविनाशी है, इसलिए देह को सुरक्षित करके रख दो। तो इस तरह की ढेर परंपराएं हैं। क्या अलग अलग धर्मों के आधार पर ढेर के ढेर कर्मकांड हैं, जो धर्म पिताओं ने टाइम टू टाइम सिखाए। अब सारी मान्यताएं सच्ची होंगी या भगवान ने जो सिखाया था वो सच्चा होगा? सत्य एक होता है या सत्य दो चार आठ ज्यादा होते हैं? सत्य तो एक होता है। तो भगवान जब आते हैं तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो भी आत्माएं दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गई थी, देव आत्माएं होते हुए भी, स्वर्ग में जन्म लेते हुए भी, उन सबको इकट्ठा करते हैं दूसरे धर्म में से। क्या हर धर्म की आत्माएं आखिरी जन्म में भारत में आकर के ब्राह्मण बनती हैं, ब्रह्मा की औलाद। और ब्रह्मा के अंदर भी वो कमजोरी का संस्कार है। क्या संस्कार है? हैं? ब्रह्मा के अंदर कमजोरी का संस्कार ये है कि वो बच्चों की बात पर प्रभावित हो जाते या माताओं की बात से प्रभावित हो जाते। जैसे आसमान का चंद्रमा है ना, वो किसकी औलाद है, कहां से पैदा हुआ? इस पृथ्वी का एक हिस्सा छिटक गया और वो चंद्रमा कहा गया, उपग्रह कहा जाता है। पृथ्वी है ग्रह और चंद्रमा है उपग्रह। उपग्रह माने पृथ्वी का हिस्सा है। तो चंद्रमा बच्चा हुआ ना, हैं? बच्चा हुआ और पृथ्वी माता हुई। तो पृथ्वी माता को वो जो ब्रह्मा बच्चा है वो बहुत महान मान लेता है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, पैदा होता है तो शिशु बच्चा जो माँ की गोद में दूध पीता है वो माँ को ही पहचानता है कि बाप को पहचानता है? माँ को ही पहचानता है। ऐसे ही वो चंद्रमा है, उसमें ज्ञान की रोशनी बहुत कम होती है। जब तो ज्ञान की कम रोशनी होने के कारण वो बाप को नहीं पहचानता, मां को ही पहचानता है। देखो अपनी एग की हिस्ट्री में टैली करो, हम जानते हैं कि कृष्ण चंद्र कहा जाता है, कृष्ण की उपमा चंद्रमा से दी जाती है। चंद्रमा 16 कला संपूर्ण बनता है, कलाहीन बनता है। तो जो चंद्रमा है उस पर पृथ्वी का परछाया पड़ता है। क्या होता है? एक तरफ सूर्य, बीच में पृथ्वी और इधर चंद्रमा। तो पृथ्वी का परछाया जो है वो चंद्रमा पर पड़ता है और चंद्रमा का वो हिस्सा दिखाई नहीं पड़ता, अंधेरा हो जाता है ना। तो जो पृथ्वी वासी हैं उनको चंद्रमा का हिस्सा दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि चंद्रमा पर अंधेरा हो जाता है। और वास्तव में चंद्रमा अंधेरे में आता है या नहीं आता है? है? अंधेरे में आता है। इसका मतलब हुआ कि जो भगवान ज्ञान सूर्य इस सृष्टि पर आता है, तो जो ज्ञान चंद्रमा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो भी अंधेरे में आती है, अज्ञानता के अंधेरे में आती है। और हम जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा जो ज्ञान चंद्रमा कृष्ण की आत्मा है, सतयुग के आदि में 16 कला संपूर्ण होता है, वो आत्मा जो कि सृष्टि में जलमयी दिखाई जाती है, तो जलमयी में पीले पीपल के पत्ते के पर ऊपर दिखाया जाता है। माने इस सृष्टि में पहले पहले कौन आया? कौन आया इस सृष्टि में? जब जलमयी थी सारी सृष्टि, सारी पृथ्वी जल में डूबी हुई थी, तो कौन आया पहले पहले? है कृष्ण आया। तो वो कृष्ण वाली आत्मा जो है उसको साक्षात्कार हुए थे ना, है उन साक्षात्कारों के आधार पर उनको पक्का निश्चय बैठ गया। कब? जब उनके भागीदार ने उनको साक्षात्कारों का क्लेरिफिकेशन दिया। वास्तव में ऐसा नहीं है कि भागीदार ने क्लेरिफिकेशन दिया, भागीदार भी तो दुनियावी धंधा दौड़ी करने वाला व्यक्ति ही था ना, है कि कोई पहुंचा हुआ संत था, ऐसा तो नहीं। लेकिन ये है कि जो ब्रह्मा के गुरु हुए, 12 गुरु किए थे उन्होंने, तो उस समय जो वर्तमान गुरु था उस गुरु ने भी उनके साक्षात्कारों का अर्थ नहीं बता पाया। बनारस में गए, बनारस के बड़े बड़े दिग्गज विद्वान पंडित आचार्यों से पूछा, उन्होंने भी नहीं बताया। तो उनके दिमाग में ये आया ब्रह्मा बाबा को कि हमारी दुकान का जो मैनेजर है वो बड़ा होशियार है, वो रत्नों का भी बड़ा पारखी है, क्या मैं उतना पारखी नहीं हूं जितना वो पारखी, और जरा विद्वान भी है। तो उससे प्रभावित थे ब्रह्मा बाबा, लेकिन उसको उन्होंने छोटी सी दुकान देख करके, उस भागीदार की छोटी सी दुकान है, कोई बिक्री इक्री होती नहीं है, गरीब है तो, और होशियार आदमी है, इसलिए उसको अपनी दुकान में मैनेजर बना के रख दिया और खुद सत्संग में चले गए। सिंध हैदराबाद में सत्संग करने लगे, उसको बता दिया कि देखो पैसा और पूंजी हमारी, और जो मेहनत करोगे सो तुम्हारी, तुम्हारी मेहनत हमारी पूंजी दोनों आधा आधा हो गया, इसलिए जो भी फायदा हो दुकान में वो आधा आधा करके बांट देना। तो दोनों में एग्रीमेंट हो गया, वो सत्संग करने चले गए और जो भागीदार है वो अपने 10 साल से उस दुकान में काम कर रहा था। सत्संग करते करते 10 साल के अंदर उनको 1936 में साक्षात्कार हुए ब्रह्मा बाबा को, जैसे और भक्तों को साक्षात्कार होते रहे, सूरदास को, तुलसीदास को, मीरा को, रैदास को, कितने भक्तों को साक्षात्कार हुए, तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए। और वो साक्षात्कारों को किसी ने क्लेरिफिकेशन नहीं दिया, समझाने दी नहीं, तो बनारस होते होते वो उसी भागीदार के पास पहुंच गए। तो भागीदार के द्वारा उनको क्लेरिफिकेशन मिला और उनको पक्का बुद्धि में बैठ गया यही सच्चा है। क्या? जो सच्चाई उनके भागीदार के द्वारा उनको मिली साक्षात्कारों का अर्थ, उसके ऊपर पक्का विश्वास बैठ गया। लेकिन भागीदार के ऊपर विश्वास नहीं बैठा। क्या? कि जो साक्षात्कारों का अर्थ दुनिया के बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य नहीं बता सके, वो अर्थ है उस भागीदार ने, जो उनके यहाँ नौकर था, मैनेजर दुकान में, वो कैसे बता सकता है? ये बुद्धि भी नहीं आया। क्यों नहीं आया है? इसलिए नहीं आया कि उनके दिमाग में था मैं दुकान का मालिक हूँ और ये मेरा नौकर है, तो देह का अहंकार रहा। उस देह के अहंकार के कारण वो अपने भागीदार को पहचान नहीं सके कि इस भागीदार में कौन सी शक्ति ने प्रवेश करके ये साक्षात्कारों का क्लेरिफिकेशन दे दिया। क्या? वो नहीं समझ सके। तो किससे समझा फिर उन्होंने? उन्होंने समझा जो दो माताएं थी यज्ञ के आदमी, एक तो भागीदार की पत्नी, क्या, और दूसरी एक और माता थी, बहुत बोलने वाली, होशियार, बोल बोल करने में ज्यादा होशियार। क्या? इससे कलयुगी दुनिया का जब अंत होना होता है, महाविनाश होना होता है ना, उससे पहले इस दुनिया की यही गति हो जाती है। क्या क्या गति हो जाती है? हैं? नहीं, दुनिया ये समझती है कि जो गाल बजाना अच्छा जानता है, क्या, वाचा से भाषण देना अच्छा जानता है, सबकी बुद्धि खींच रहे हो, जो भाषण देना अच्छा जानता है, बस वो ही दुनिया का प्रकांड विद्वान है, होशियार है। इसलिए कलयुग के अंत में सारे देश देशांतर में ये हवा फैल जाती है। क्या? कि जो अच्छा भाषण करेगा वो ही गद्दी संभालने लायक है, राजाई की गद्दी। सब देशों में क्या हो जाता है? दुनिया के सारे देशों में ये बात चल पड़ती है कि जो अच्छा भाषण करे वो ही देश को सुधार सकता है और बाकी कोई सुधार नहीं सकता। अब बताओ, कलयुग के अंत में बड़े से बड़ा भाषण करने वाला कहां हुआ? वाचा का। दोनों ये फाउंडेशन किसी ने तो डाला होगा, है? चार युगों की शूटिंग होती है, तो चार युगों की शूटिंग में अंतिम युग है कलयुग, और कलयुग में का अंतिम हिस्सा है संगम युग। तो संगम युगी जो शूटिंग काल है, चार युगों की शूटिंग ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग होती है संगम में, तो उस संगम में वो ढूंढो कि वो व्यक्ति कौन है जो बड़ा अच्छा गाल बजाना जानता है। गाल भी बजाना अच्छा जानता है और फिर सबको वाचा की शक्ति से प्रभावित करके अपनी प्रजा भी बना लेता है। प्रभावित माने प्रजा बना लेता है। बताओ है कौन
मोड़ी?
वो तो बाहर की दुनिया की बात हुई, हम संगम युग ब्राह्मणों की दुनिया में पूछ रहे हैं, शूटिंग पीरियड में। हाँ कौन? बड़ी मम्मी। कौन से धर्म से आती है? पंजाब। पंजाब में कौन से धर्म के लोग रहते हैं ज्यादातर? है गुरु नानक से प्रभावित सिख धर्म के लोग। भले हिंदू होंगे तो भी गुरु नानक को बहुत मान्यता देते हैं। सिख धर्म में जो इबादत का स्थान होता है, पूजा करने की स्थली, उसका नाम क्या है? गुरुद्वारा। किसी का द्वारा? गुरु जी का द्वार। उस गुरु जी के द्वार में 24 घंटे गुरुवाणी चलती रहती है। क्या चलता रहता? गुरुवाणी। उसमें कोई इंटरफियर नहीं कर सकता। क्या गुरु की वाणी को वो सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। गुरुद्वारे में जो वाणी चलती है, और हमारे भारतवर्ष में भक्ति मार्ग में वाणी माने वाचा, वाचा की देवी कौन है? है सरस्वती, जिसका नाम है सरस्वती जगदम्बा। क्या नाम है? सरस्वती जगदम्बा, जगत की अम्बा। तो वो जगत की अम्बा कौन से खून से आती है? पंजाब के खून से आती है। जहां सिख धर्म पनपता है और जिस परिवार में जन्म लेती है, वो परिवार भी गुरु नानक को बहुत मानता। वैसे तो सभी परिवार पंजाब के किसको ज्यादा मानते? गुरु नानक को बहुत मान्यता देते हैं। तो वो जो निमित्त बनती है ब्राह्मणों की दुनिया में, वो कौन सी पावर के आधार पर निमित्त बनती है जो जगदम्बा का टाइटल मिल जाता है? सारा जगत उसे अपनी अम्बा मानता है। उसमें कौन सी शिफ्ट होती है, कौन सी खासियत होती है जिस खासियत के आधार पर सारा विश्व जगत उसे अम्मा मान लेता है, माँ मान लेता है? है वाचा की शक्ति। कौन सी शक्ति? वाचा की शक्ति। और सारी दुनिया सारा जगत उसे माँ मान लेता है और माँ समझ करके उसको मान्यता देता है, बड़े से बड़ी मान्यता। जैसे अपने भारत में भगवान के सामने शिवालय में जाएंगे तो भी किसका नाम पहले लेंगे, त्वमेव माता, फिर बाद में च पिता त्वमेव, तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है। क्या जब नींद आती है ना तो कड़क के बैठना चाहिए, ऐसे बैठेंगे ऐसे बैठेंगे तो और नींद आती है। कोई आधार नहीं, क्या आधार लेंगे ना ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो बताया कि कौन सी पावर उसमें होती है जिसके आधार पर सारा जगत उसके सामने झुक जाता है, प्रभावित हो जाता है। जो सिखों में मान्यता है राज करेगा खालसा। कौन राज करेगा? खालसा। खालसा माने पवित्र। कैसा पवित्र है? ऐसा पवित्र है सिख लोग जो हैं, दुनिया में एक ही कौम ऐसी है और खास करके भारत में, जिन्होंने अंग्रेजों से और मुसलमानों से सबसे जास्ती टक्कर ली है। सिर्फ टक्कर ही नहीं ली, उनको पस्त कर दिया। क्या वो मुसलमान भी सिख बटालियों से बहुत डरते रहे और अंग्रेज भी सिखों से ही डर करके भाग गए। नहीं तो हिंदुओं में इतनी ताकत नहीं थी कि अंग्रेजों को भगा पाते। क्या सिखों से डर करके भागे हैं? क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में जितना सिखों ने खून बहाया, क्या पंजाब ने जितना खून बहाया पंजाबियों ने, उतना पूरे देश के किसी क्षेत्र ने ऐसा खून नहीं बहाया। पता है वो कौन सी जगह है जहां पंजाबियों का खून सबसे ज्यादा बहा था स्वतंत्रता संग्राम में? जलियांवाला बाग। हजारों की हजार पब्लिक उतने बड़े बाग में बैठी हुई थी, सभा हो रही थी, और जो अंग्रेज अधिकारी था वो जुनून में आ गया, क्योंकि कानून बनाया था अंग्रेजों ने। कानून ये बनाया था, पुलिस एक्ट, कि पुलिस के व्यक्ति को कोई भी प्रजा का आदमी पिटाई नहीं कर सकता। पुलिस मारेगी लेकिन पुलिस की पिटाई नहीं कर सकता, पुलिस को मार नहीं सकता। क्या अपनी सुरक्षा के लिए भी नहीं मार सकता? पुलिस का आदमी मार डाले तो उसे हक है मार डाले, लेकिन जो व्यक्ति पिट रहा है वो पिटता हुआ व्यक्ति अपनी सुरक्षा में कुछ नहीं कर सकता। ये पुलिस एक्ट बनाया। अगर प्रजा का आदमी पुलिस के व्यक्ति को पिटाई करेगा, मारेगा, तो उसके ऊपर मुकदमा चला करके उसको दंड दिया जाएगा, लेकिन पुलिस के आदमी को कोई दंड नहीं देगा। वो एक्ट, पुलिस एक्ट, आज भी इंडिया में ऐसा ही चल रहा है। नहीं समझ में आया? समझ में नहीं आया हो तो बहन से इसका अनुवाद करके समझना। नहीं, बाद में। तो ये बात यहाँ की है, ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया की। ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में जगदम्बा जो महाकाली का रूप धारण करती है, उसका तंत्र इतना जबरदस्त बनता है कि सारी दुनिया को कंट्रोल करती है। लेकिन उसके कंट्रोलिंग का तंत्र जो चलाने वाले होते हैं, जिनमें सबसे जास्ती पोल पट्टी भरी हुई होती है, क्या जो कंट्रोल करने वाले होते हैं, अरे कोई तो होंगे, अकेले महाकाली कंट्रोल कर लेगी नहीं, तो उनमें सबसे जास्ती पोल पट्टी भरी होती है। इसलिए उस तंत्र का नाम भक्ति मार्ग में आज भी पड़ा हुआ है पोलिस, पोल इस, उसमें सबसे जास्ती पोल पट्टी भरी हुई है। पोल पट्टी माने खुद है चोर डकैत लुच्चे लफंगे, चोरों डकैतों लुच्चों लफंगों को उकसाने वाले, साथ देने वाले, उनके मुखिया बन के रहते हैं। कौन? वो ब्राह्मणों की दुनिया में जो जगदम्बा का तंत्र बनता है, वो ऐसा फाउंडेशन डालता है कलयुग के अंत में, ताकि दुनिया का विनाश हो जाए, और विनाश हो जाता है। ऐसा पाप जब ज्यादा बढ़ेगा, पाप का घड़ा भरेगा या नहीं भरेगा? पाप का घड़ा भरता है और दुनिया का खलासा हो जाता है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में वही तंत्र आने वाला है। क्या ऐसे नहीं समझे कि आधार मूर्त ब्राह्मणों की दुनिया में जो ब्रह्मा की गोद में खेलने वाले कुखवंशावली बच्चे हैं, जो गोद के बच्चे, कुख माने गोद के बच्चे हैं, वो छोटे छोटे बच्चा बुद्धि बच्चे जो मां को ही सब कुछ मानते हैं, उनका ही खलासा होगा? नहीं, जो उद्धार मूर्त हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, उद्धार, सारी दुनिया को हरण करके बुद्धि को ऊपर ले जाने वाले हैं, वो उद्धार मूर्त बीज रूप आत्माएं, उनका भी क्या होने वाला है? उनका भी खेल खलास होने वाला है। ऐसा पापाचार बढ़ेगा। क्या बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में इतना पापाचार नहीं बढ़ता है जितना ये बीज रूप आत्माओं की दुनिया में पापाचार ज्यादा बढ़ता है? जिसमें शक्ति होगी वो ज्यादा पाप करेगा, या जिसमें शक्ति ही नहीं होगी वो ज्यादा पाप करेगा? जिसमें शक्ति होगी वो ज्यादा पाप करेगा, और शक्ति नहीं होगी तो उतना पाप भी नहीं कर सकता। और शक्ति क्या चीज है, बड़े से बड़ी शक्ति कौन सी है? हैं? बड़े से बड़ी शक्ति है योग की शक्ति। क्या? योग की शक्ति, याद की शक्ति। ये याद की शक्ति ऐसी बड़ी शक्ति है कि अच्छे से अच्छा काम कोई करना चाहे तो अच्छे से अच्छा काम कर सकता है। जैसे कुमारों के लिए बोला, कुमार चाहे तो नई दुनिया बना सकते हैं। इतनी शक्ति है उनके अंदर, लेकिन वो तो स्थूल शक्ति है। कुमारों के अंदर कौन सी शक्ति है? योग की शक्ति की बात बताई या स्थूल नौजवान अवस्था की जो शक्ति होती है, वीरवान, ओजवान, कौन सी शक्ति? खून के अंदर से, खून से जो वीर्य बनता है वो वीर की शक्ति है ना। वो तो स्थूल चीज हुई, वो स्थूल दुनिया की बात है, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सी शक्ति है बड़े से बड़ी? योग बल, याद का बल। किसकी याद? किसकी याद है? अरे भारतवर्ष में तो भगवान के कितने रूप दिखा दिए, कहते भगवान को याद करो। क्या? सुअर भगवान, बारह भगवान दिखाया ना, बारह माने सुअर। गणेश भगवान, हाथी को भगवान बना दिया। हनुमान भगवान, बंदर को भगवान बना दिया। मत्स्यावतार, माछलेव का अवतार, वो भी भगवान हो गया। दस अवतार जो प्रसिद्ध हैं, उनमें मछली का अवतार भी है, वो किसकी यादगार है? जगदम्बा की यादगार। कहाँ रहती है मछली? है मछली जल की रानी है, है ना, जल के अंदर रहती है। तो मछलियों में सबसे बड़ी मछली कौन सी है जो शास्त्रों में गाई हुई है? कोई है या नहीं? जिस माछले के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सका। क्या? गंगा ने सवारी की। किसने सवारी की? गंगा ने सवारी की। और गंगा नदी में ही वो मगरमच्छ मिलता है ज्यादा। मैंने पैदाइश कहां से हुई होगी? है? वो माछला जो बड़ा बड़ा रूप धारण करता हुआ दिखाया गया कि राजा ने उसे नहाने के बाद चुल्लू में ले लिया, और चुल्लू में आ गई छोटी सी मछली, उसके ऊपर दया आने लगी तो उसको घर ले आया। घर में लाते लाते कमंडल में ले आया,
वो और बड़ी हो गई, कमंडल सारा भर गया, घड़े में डाल दिया, वो घड़ा भी भर गया, नाद में डाल दिया, जानवर खाना खाते हैं ना, नाद में डाल दिया, वो भी भर गया। फिर एक बड़ा हौदा बनाया, उस हौदे में डाल दिया, वो भी भर गया। इतनी बढ़ती चली गई, आखरीन उसको तालाब में डाल दिया, तालाब भी भर गया। वहां से निकाला, नदी नहर में डाल दिया, वो नदी भी, नदी का पानी रोक दिया। आखरीन उस राजा ने उसको सागर में डाल दिया। बताओ कौन सी नदी है वो? सारी दुनिया का जल रोक देती है, ज्ञान जल। सारी दुनिया उसके सामने ज्ञान जल का मुकाबला नहीं कर सकती, रोक देती है। चाहे नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे कुछ भी हो, आखरीन कहाँ समा जाती है? सागर में। सीधी नहीं सागर में समाती, पहले गंगा नदी में समाती है। कौन सी नदी में? गंगा नदी में। गंगा नदी में भी उसका जल इतना ज्यादा बढ़ता है, नदी में मछली का रूप इतना ज्यादा बढ़ता है कि आखिरन वो नदी जो है वो रोकती है पानी को, तो उसके दो हिस्से बन जाते हैं। एक हिस्सा चला जाता है बंगाल की तरफ और एक हिस्सा चला जाता है उधर आसाम की तरफ, जो जाकर के ब्रह्मपुत्रा से मिलता है। किसकी पुत्रा? हिस्ट्री में क्या नाम है? ब्रह्मपुत्री। हिस्ट्री में नाम क्या है? पुत्री, पुत्रा नहीं है, पुत्री। पुत्री का मतलब क्या हुआ है? ब्रह्म माने ब्रह्मा, ब्रह्म माने ब्रह्मा, और ब्रह्मा की पुत्री कौन हुई? लक्ष्मी। उसमें बड़ा विशाल जल रहता है। क्या गंगा में इतना विशाल जल हमेशा नहीं रहता? यमुना में भी नहीं रहता। ज्यादा विशाल जल की मात्रा किस में? ब्रह्मपुत्र। लेकिन पहाड़ों से ऊंची ऊंची स्टेज से बहकर आती है। कहां से? पहाड़ों की ऊंची स्टेज से बहकर आती है। ऊंची स्टेज माने है? ऊंची स्टेज माने अरे पवित्रता की ऊंची स्टेज। पहाड़ों में वायुमंडल पवित्र होता है या पवित्र होता है? मैदान में नदियां बहेंगी तो उनमें कचरा मिलता है मैदान का, नाले मिल जाते हैं मैदान में, मनुष्यों का सारा कचरा उन नालों में जाता है, नालों से नदी में जाता है, तो जल कैसा हो जाता है? गंदा हो जाता है। और पहाड़ों पे जो नदी बह रही है उसका जल शुद्ध रहता है, कचरा नहीं मिलता। तो टैली करो, ब्रह्मा की पुत्री प्रैक्टिकल में जो पार्ट बजाए रही है ब्राह्मणों की दुनिया में, जल पवित्र है या अपवित्र है? ज्ञान जल पवित्र है। और निकलती कहां से है? है? हिमालय पहाड़ से तो निकलती है, जिसका नाम ही है हिम आलय। हिम माने बर्फ, आलय माने घर। क्या बर्फ के घर से ही पैदा होती है। जिस बर्फ के घर का नाम शास्त्रों में रखा गया है, दो नाम है, हिमवान, क्या
हिमवान
माने बर्फ वाला, जाम रहता है जल। अब बताओ वो बर्फवान कौन है, हिमवान कौन है, जिसको शास्त्रों में हिमालय भी कहा है, जिसकी हिमालय पुत्री पार्वती कहा जाता है, ब्रह्मा बाबा। उनकी बुद्धि चलती ही नहीं है ज्ञान में, क्या जो ज्ञान से शब्द सुन लिए वो ही शब्द दूसरों को सुना दिए, बस। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको तुलसीदास के, रैदास के, सूरदास के, कबीरदास के दोहे कवित्त रटा दो तो रटेंगे, रटा हुआ सुना देंगे, अर्थ तो कुछ भी पता ही नहीं, कुछ गहराई का पता नहीं। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा की जो बुद्धि थी, बुद्धि रूपी आत्मा है, वो बर्फ की तरह जाम, उसमें ज्ञान जल बहता नहीं है, क्या ज्ञान जल बहता नहीं, क्योंकि जाम है, बर्फ की तरह जाम है। तो शास्त्रों में नाम क्या रख दिया, हिमवान, हिमालय राज। और हिमालय की पुत्री वो पार्वती कही गई है, तो वो निकलती है कहां से, है कहां से निकलती है, अरे हिमालय ब्रह्मा, ब्रह्मा अम्मा है, अम्मा से ही बच्चा पैदा होता है, या अम्मा में कहीं और से आता है, है? अम्मा में बच्चा कहां से आता है, बाप से आता, तो बाप कौन है, ज्ञान मानसरोवर। हिमालय पहाड़ पर भी जो सदा स्थिर है ज्ञान मानसरोवर, जहां इतना ठंडा मौसम, ठंडा इलाका है कि धूल का नाम निशान नहीं, धूल बने देवान की धूल पनप ही नहीं सकती, ऐसे स्थान पर वो जो ज्ञान मान सरोवर है उसका जल, उसमें धूल मिट्टी का नाम निशान नहीं, इतना पारदर्शी जल है कि ऊपर से देखो, नजदीक से देखो तो बॉटम दिखाई पड़ेगा, कोई भी देखे उसको पारदर्शी जल दिखाई पड़ेगा। जल माने ज्ञान जल। उस सरोवर का जो दुनिया की सबसे जास्ती ऊंचाई पर है, कौन सा सरोवर, ज्ञानमान सरोवर, उसका ज्ञान जल या स्थूल जल कहो, इतना पारदर्शी है कि हिंदू देखें तो भी सब कुछ दिखाई पड़ेगा, क्या मुसलमान देखें, सिख देखें, कोई भी धर्म का व्यक्ति देखेगा, हर धर्म की आंखों में अपना अपना चश्मा चढ़ा हुआ है ना, है? हर धर्म की आंखों में अलग अलग चश्मा चढ़ा हुआ है कि सबका चश्मा एक जैसा है, आंखों में ये शीशा होता है ना, तो सबकी दृष्टि अपनी अपनी, लेकिन कोई भी देखेगा तो पारदर्शी जल। उसमें पत्थर भी फेंको तो पत्थर भी दिखाई पड़ेगा कि हाँ पत्थर पड़ा हुआ है। माने कोई भी व्यक्ति सच्चा क्या है और झूठा क्या है, सत्य असत्य का उस ज्ञान जल के आधार पर फैसला कर सकता है। ऐसे ज्ञान मानसरोवर से कौन सी नदी निकलती है? 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 ब्रह्मपुत्री। देखो दुनिया वालों ने भी नाम ब्रह्मपुत्रा नहीं रखा। ब्रह्मा बाबा मुख से बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा, लेकिन दुनिया वालों ने क्या नाम रखा शास्त्रों के आधार पर? ब्रह्मपुत्री। तो शास्त्रों में सच्चाई है या नहीं है? है शास्त्रों में, फिर भी सच्चाई है, क्योंकि उन शास्त्रों का जो लिखने वाला है या अर्थ करने वाला है, व्याख्या करने वाला है, वो ही आत्मा है जो शिव बाबा कही जाती है ब्राह्मणों की दुनिया में। क्या कही जाती? शिव बाबा। शिव बाबा माने है, शिव माने बिंदी और बाबा माने साकार, बड़ा रूप, लिंग है बड़ा रूप, शरीर की यादगार, और उसमें बिंदु है आत्मा की यादगार। माने वो शरीर भी है और आत्मा भी है, उसका शरीर भी नष्ट नहीं होता और उसकी आत्मा भी नष्ट नहीं होती। इसलिए ब्रह्मा के मुख से ब्रह्म वाक्य है, मुरली में वाक्य है क्या? साकार और निराकार दोनों के मेल को शिव बाबा कहा जाता है। क्या क्या? साकार शरीर की यादगार लिंग बनाते हैं शिव बाबा के मंदिर में, लिंग साकार शरीर, जो साकार शरीर कलयुग के अंत में इस दुनिया में पत्थर की तरह पार्ट बजाता है। कैसा शरीर धारी? पत्थर बुद्धि। कोई उसे कितना भी परिवर्तन करने की कोशिश करे वो परिवर्तित होता ही नहीं। जो त्रिमूर्ति में दिखाया जाता है ब्रह्मा बड़ा लीनेंसी में बैठा हुआ है, सीधा साधा। माताएं भी उसे अपने तरीके से चलाई लेती, बच्चे भी उसे अपने तरीके से चलाई लेते, और शंकर हिलने वाला नहीं। कोई कितना भी हिलाए वो हिलने वाला, चेंज होने वाला नहीं। ऐसा पत्थर की तरह यादगार बनाया जाता है भक्ति मार्ग में शिवलिंग का। कौन सा पत्थर? संगमरमर नहीं। हाँ कि भाई संगमरमर का पत्थर हो, जितने भी दुनिया में पत्थर बने हैं शिवलिंग के, वो सब ग्रेनाइट के पत्थर। जिस ग्रेनाइट का बड़े से बड़ा पहाड़ दुनिया में है, जो बहुत गहरा है, क्या पृथ्वी के अंदर इतना गहरा पहाड़ धसा हुआ है कि दुनिया में बड़े बड़े भूकंप भी आएंगे तो भी पहाड़ हिलने वाला नहीं। सारी दुनिया भूकंपों में खलास होगी, वो पहाड़ स्थिर रहेगी। कौन सा पहाड़? माउंट आबू। क्यों ऐसा नाम रखा गया? माउंट माने पहाड़, आबू, बू माने बदबू, आ माने आए। जिस पहाड़ पर सारी दुनिया की बदबू से बदबू भरी हुई कर्म करने वाली आत्माएं उस पहाड़ पर आकर इकट्ठी हो गईं, तो उसका नाम रख दिया माउंट आबू। ये माउंट आबू पहाड़ पर कौन सी आत्माएं ऐसी होती हैं जो दुनिया में सबसे जास्ती बदबू भरा पार्ट बजाती है? भ्रष्ट इंद्रियों का। है? अरे देवताएं तो ज्ञानेंद्रियों से पार्ट बजाते हैं, नाक आंख कान मुंह, उनमें बदबू निकलती है नहीं, गंध तो नहीं निकलती। जो भ्रष्ट इंद्रियां हैं उनसे गंध निकलती है, उनमें भी सबसे जास्ती गंध फैलाने वाली है काम इंद्रिय। आज की दुनिया में तो काम इंद्रिय से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं पूरे ही बिच्छू टेंडन पैदा हो रहे हैं। क्या है ऐसा जानवर कौन सा होता है जो पैदा होता है और अपनी अम्मा का पेट ही फाड़कर पैदा होता है? बिच्छू। क्या? तो ये बिच्छू हैं। कौन? आज की संतान जो भ्रष्ट इंद्रियों की गंध से पैदा हो रही है वो बिच्छू टिंडन मिसल संतान है। माँ बाप को ही सबसे जास्ती दुख देती है, सबसे जास्ती माँ को। तो देखो ये सब बातें हैं कहाँ की? हैं ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया की बातें हैं। ये जगदम्बा के जो बच्चे हैं ना, अम्मा है ना, है जगत पिता की सहचरी है ना, है जगत पिता जिसे शिवशंकर भोलेनाथ कहा जाता है, कहते कि नहीं? उस जगत पिता की सहचरी जगदम्बा उससे जो बच्चे पैदा होते हैं ना, कौन से बच्चे? दुनिया की बीज रूप आत्माएं। कौन से बच्चे? दुनिया की बीज रूप आत्माएं। वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म जब लेती है इस दुनिया में तो माँ का पेट फाड़ करके जन्म लेती है। क्या कहा है? किसको सबसे जास्ती दुख देती है? है माँ को ही सबसे जास्ती दुख देती है। कौन सी माँ? है? है जगदम्बा। ये वो बीज रूप आत्माएं हैं जिनसे सारी दुनिया के धर्म के लोग जन्म लेते हैं। सब धर्मों के मूल बीज हैं, बारह बारह के नौ धर्मों के मूल बीज, बारह इंटू नाइन कितने हुए?
108।
ये ऐसी सख्त आत्माएं हैं, संसार में जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती हैं तो खुद भी रोते रोते जन्म लेती हैं। क्या? खुद भी, जैसे दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं ना, इस जगत में, स्वर्ग की बात नहीं, इस जगत में जो बच्चे पैदा होते हैं, कैसे पैदा होते? रोते रोते या हंसते हंसते? रोते रोते पैदा होते। तो उनका बाप कोई होगा या नहीं है? उन अनेक अनेक धर्मों में जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं, अलग अलग धर्मों के अलग अलग फॉलोअर्स है ना, तो उनके कोई मूल रूप में बाप भी होते होंगे कि नहीं? नहीं होते हैं। वो नौ हैं। क्या? जिनकी यादगार नौ रतन दिखाते हैं, नवरतन की अंगूठी भी पहनते हैं। क्या? आसपास आठ रतन और बीच में हीरा दिखाते हैं, दिखाते ना। वो रतन एक से एक बढ़कर के बेस कीमती, हीरा सबसे जास्ती, हीरो पार्टधारी। तो ये नौ जो हैं, वो दुनिया के बड़े से बड़े पावरफुल बीज हैं। और नंबर बारह हैं कि एक जैसे हैं? हैं नंबर बारह। ये भी जन्म लेते हैं, माने प्रत्यक्षता जब संसार में इनकी होती है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते समय ये भी अंदर की आंख से बहुत रोते हैं। इनका मुखिया कौन? अरे नौ का मुखिया कोई होगा कि नहीं? कौन? अरे हैं? नौ का मुखिया कौन? नौ रत्नों का मुखिया कौन है? हीरो पार्टधारी हीरा है ना। तो वो भी रोता होगा कि नहीं? नहीं है? क्या हंसता रहता है? है हंसता रहता है या रोता है? रोता है। कभी देखा? अरे रोते हुए देखा क्या है? क्यों रोता है? तो रोते हुए देखना चाहिए ना है। कभी सर्दियों में रजाई ओढ़ करके लेटा हुआ हो, पहचान लिया हो किसी ने, तो रजाई हटा देना, देखना कि रोता है कि नहीं रोता है। अव्यक्त वाणी में बाप दादा ने बोला, ब्रह्मा बाबा ने गुलजार दादी के मुख से क्या बोला? जो पुरुष हैं वो मन से रोते हैं, हैं? और कन्याएं माताएं आंसुओं से रोती हैं। क्या? पुरुष जो हैं अंदर से रोते हैं और माताएं बाहर से रोती है। तो ज्यादा दुखदाई रोना किसका है? जो अंदर अंदर रोता रहे और बाहर की दुनिया को दिखाए कि हंसता है, खुश खुश दिखाई दे, वो ज्यादा दुखदाई रोना है, या जो बाहर से आंसू बहा दे, है ना, वो ज्यादा दुखदाई है। अंदर अंदर से रोता भी रहता है और किसी को दिखा भी नहीं सकता। और ये बात ब्रह्म महावाक्य मुरली में भी बोल दी, भगवान को जितना रुलाया है उतना और किसी को दुनिया में नहीं रुलाया है। अरे दुनिया कहेगी अरे भगवान भी इनका रोता है, हैं? वो भगवान का एक जो रोए, भगवान दुख की दुनिया बनाता है या सुख की दुनिया बनाता है, हैं? तो सुख की दुनिया बनाने वाला खुश रहेगा, खुद सुख रहे खुश रहेगा तब तो दूसरों को सुख देगा, खुद ही सुखी नहीं होगा तो दूसरों को सुख देने वाली सुखदाई दुनिया कैसे बनाएगा, बनाएगा है? तो ये तो बात उल्टी हो गई कि भगवान भी रोता है। हाँ वास्तव में भगवान नहीं रोता है, क्या भगवान जब इंसान होता है जब तक मनुष्य होता है, मन चलाता है अंदर अंदर, मन में अंदर अंदर कुछ न कुछ संकल्प चलता है तब ही रोता है। क्या जब नो संकल्प है काल में बिंदी और निरंतर के लिए बिंदी, क्या एक सेकंड भी कोई संकल्प ना आए, इच्छा मात्रम अविद्या, तो फिर रोने की बात होगी है? रोने की बात नहीं। तो भगवान को जितना रुलाया है उतना किसी को नहीं रुलाया है, इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान का पार्ट बजाने वाली जो आत्मा है मनुष्य आत्मा वो रोती है। क्या मनुष्य को भगवान ही नहीं कहा जाता? वास्तव में जो मन का उपयोग करता है वो भगवान है ही नहीं। मनुष्य अगर मन का उपयोग करना बंद कर दे, मन को पूरा कंट्रोल कर ले, कोई संकल्प न चलने दे, एकदम बिंदु सदाकाल का बिंदु, क्या सदा काल के लिए बिंदु, तो वो भगवान कहा जाता है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। क्या मनुष्य है मन मन वाला है, मननात् मनुष्य कहा जाता है, मनन चिंतन मंथन करने वाला मनुष्य कहा जाता है। कोई भी मनन चिंतन मंथन नहीं, मन के अंदर भी नहीं, वाचा के अंदर तो बड़ी बात, तो उसको भगवान कहा जाएगा। तो ब्रह्म वाक्य झूठा बोला या सच्चा बोला? क्या ब्रह्म वाक्य भगवान को जितना रुलाया है उतना और किसी को नहीं रुलाया। अब क्लेरिफिकेशन भी दे दिया, भगवान कौन? इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा। और शिव बाबा किसको कहा जाता? जो साकार शरीर और निराकार ज्योति बिंदु आत्मा दोनों इकट्ठे होके पार्ट बजाएं तो शिव बाबा माना भगवान हो गया। हाँ एक है उसकी संपन्न स्टेज और एक है उसकी पुरुषार्थी स्टेज। तो संपन्न स्टेज है उसकी यादगार है शिवलिंग। क्या लिंग माने शरीर भी है और उसमें ज्योति बिंदु आत्मा भी है, लेकिन संकल्प कुछ नहीं, एकदम जैसे पत्थर, कोई भावना नहीं, कोई भावना का अतिरेक नहीं। क्या तो बताया, जिसमें कोई भी प्रकार की भावना नहीं रहती, भावना का अतिरेक होता ही नहीं कभी, लेकिन है देहधारी, देह की कर्मेंद्रियों के द्वारा पार्टी भी बजाता है, लेकिन जिन कर्मेंद्रियों से पार्ट बजाता है उसकी, उन कर्मेंद्रियों की स्मृति उसे नहीं रहती, उन कर्मेंद्रियों से वो किसी प्रकार का सुख या दुख अनुभव ही नहीं करता, तो उसको कहा जाता है भगवान। इसलिए गीता में लिखा है कि ऐसा योगनिष्ठ हो, कैसा योगनिष्ठ है, जिसकी कर्मेंद्रियां तो हैं, देह तो है कर्मेंद्रियों वाला, ज्ञानेंद्रियों वाला, लेकिन कर्म करते हुए भी उनका अनुभव ना अच्छा अनुभव लेता और ना बुरा अनुभव लेता, कर्मेंद्रियों से ना सुख भोगता और ना दुख भोगता, कोई प्रकार की भावना मन की नहीं, मन माने दिल की कोई भावना नहीं, कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्र अविद्या। तो ऐसी आत्मा को कहा जाता है भगवान। क्या भाग्यवान, दुनिया का सबसे जास्ती भाग्यवान जो ब्रह्म वाक्य है कि मैं किस तन में आता हूँ, हैं, भाग्यशाली रथ में आता हूँ, यही बात गीता में कही है। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, इदम् शरीरम् कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये तेरा जो शरीर रूपी रथ है ना, ये धर्म क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है। क्या, कैसा क्षेत्र, क्षेत्र माने युद्ध भूमि, युद्ध का क्षेत्र है। दुनिया में जितने धर्म फैले हुए हैं वो सब धर्म आपस में लड़ते हैं, महाभारत युद्ध होता है, जिससे बड़ा युद्ध कभी दुनिया में न हुआ है न कभी होगा, ऐसे बड़े से बड़े महाभारी महाभारत युद्ध में सब धर्मों की आत्माएं कूद पड़ती हैं। ऐसे नहीं कोई कोई धर्म हो, क्या उन शास्त्रकारों ने तो दिखा दिया द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण, अरे द्वापर में सब धर्म होते हैं दुनिया में है? सब धर्म तो द्वापर में नहीं होते, सब धर्म कब इकट्ठे होते हैं, कलयुग के अंत में इकट्ठे होते हैं, इसीलिए तो गीता में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, क्या सब धर्मों को त्याग दे, सब धर्मों को त्यागेगा तो धर्म पिताओं को नहीं त्यागेगा है? अरे सब धर्मों को त्यागेगा तो धर्म पिताओं को त्यागेगा कि नहीं है? त्यागेगा, इसलिए बोला इन देहधारी धर्म गुरुओं को मारो गोली। कौन सी गोली, वो हद की गोली होती है जो हद की दुनिया में, और यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में है बेहद ज्ञान की गोली। क्या हाँ, इन देहधारी धर्मगुरुओं को बोलने मत दो, ऐसे ऐसी ज्ञान की गोलियां मारो जैसे शास्त्र में दिखाया गया, बड़े से बड़ा देह अभिमानी धर्मगुरु बड़े से बड़े शास्त्र में दिखाया गया है, याद है? और बड़े से बड़ा शास्त्र कौन सा है, बड़े से बड़ा धर्मगुरु कौन सा है उस शास्त्र में? भीष्म पितामह। बड़े से बड़ा शास्त्र है महाभारी, महाभारत धर्म ग्रंथ, उसमें भीष्म पितामह बड़े से बड़ा गुरु है बताया। हे अर्जुन, तेरे को क्या करना है? हे सद्भाग्य का अर्जन करने वाले अर्जुन, हे सद्ज्ञान का अर्जन करने वाले अर्जुन, ज्ञान धन का अर्जन करने वाले अर्जुन, तेरे को क्या करना है? इन देहधारी धर्म गुरुओं को गोलियां मारते जाओ, मारते जाओ, मारते जाओ। ये धराशायी होकर के चार होना चित्त गिर जाए। इन्होंने जो झूठे झूठे धर्म सुनाए है ना, धर्म फैलाए है ना, इनका मुंह बंद हो जाए। जैसे भीष्म पितामह को इतने बाण मारे, इतने बाण मारे, इतने बाण मारे कि वो धराशायी हो गए। और ये भी बता दिया, ये बाण कौन मारेंगे? हाँ? कुमार मारेंगे, अधर कुमार मारेंगे, अधर कुमारियां मारेंगी, ज्यादा उम्र वाली या बड़ी बड़ी उम्र वाली कुमारियां मारेंगी या छोटी छोटी कन्याएं मारेंगी? हैं? दिखाया, छोटी छोटी कन्याएं बड़े बड़े धर्मगुरुओं को बाण मारेंगी। क्या, कैसी कन्याएं? छोटी छोटी कन्या। अच्छा, ब्रह्मा कुमारियां जो ब्रह्मा की औलाद अपन को बताती हैं, उन ब्रह्मा कुमारियों में सबसे छोटी कुमारी कौन है? हाँ, जिस ब्रह्मा कुमारी का नाम ब्रह्मा कुमारियों ने रख दिया था अंतिम बाला। क्या नाम रख दिया? अंतिम बाला। बाला माने कन्या। कैसी बाला? जो ब्रह्मा कुमारियां जन्म लेती हैं, भगवान की गोपियां बनती हैं। गोपियां माने गुप्त संबंध भगवान के साथ जोड़ने वाली। गुप्त क्यों? गुप्त संबंध किस लिए? अरे कोई संबंध होता है जो गुप्त में जोड़ा जाता है, दरवाजे भी बंद कर दिए, कोई ना आए, बस वो एक और हम एक। क्या वो बम्बैया वाले हैं ना, क्या क्या दिखा देते हैं, क्या दिखाते हैं? हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। अरे बाप रे, ऐसा गुप्त संबंध क्या कहा जाता है? कौन सा संबंध? भाई बहन का, भाई भाई का है, माँ बेटे का नहीं। कौन सा संबंध? पति पत्नी का, साजन और सजनी का संबंध। तो ब्रह्म वाक्य है मुरली में, तुम सब हो सजनिया और एक है वो भगवान साजन। वो क्या है? वो है साजन और तुम सात सजनिया, तुम सात सजनियों को, सजनियों के पास क्या होता है, है? अरे ज्यादा उम्र की हो गई तो भी क्या होता है, और कम उम्र की है तो भी क्या होता है, है? सबसे बड़ी अगर संपत्ति है और वो संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहें तो सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, जो उस एक साजन की सजनियां बनती हैं प्रैक्टिकल में इस दुनिया में, क्या संपत्ति है, है? नहीं, ज्ञान की जन संपत्ति कहां से होती है, हैं? जो भी नदियां हैं, नदियां है ना, ज्ञान जल बहता है ना, तो वो ज्ञान का जल बहता है, बहता है ना, तो कुछ नई बात निकलती है क्या, ज्ञान के नए नए पॉइंट निकालती हैं, निकालती हैं, हैं? ज्ञान के नए नए पॉइंट नहीं निकालती, वो पानी का पानी ही रहता है, क्या क्या रहता है, नदियां पानी की होती हैं, तो पानी को कितना भी मंथन करो उसमें मक्खन मक्खन नहीं निकलेगा। कौन सा जल है जिसका जल मंथन के रूप में शास्त्रों में गाया हुआ है, है? सागर, क्षीर सागर नहीं, सागर, तो वो ज्ञान सागर ही है क्या, जिसकी गोद में वो धरती रूपी माताएं कन्याएं गोद में बैठी हुई हैं। दुनिया में भी देखा जाए हद में तो तीन हिस्सा सागर है और एक हिस्सा धरणी रूपी माता है, तो कौन किसकी गोद में है, जो धरणी माता है कन्याएं हैं, वो धरणी माता रूपी कन्याएं माता हैं, वो सागर बाप की गोद में है, सागर बाप है और कन्याएं माता हैं सजनियां, तो ऐसी सजनियां उनके लिए बोला क्या कि सब सजनिया सागर में समाई हुई हो या नहीं हो, है? सागर में समाई हुई है। और मछलियां कहां होती हैं, है? सागर में ही मछलियां होती हैं सबसे जास्ती, तो ज्ञान सागर की जो भी मछलियां हैं उन मछलियों में सबसे बड़ी मछली का नाम क्या दिया, मत्स्यावतार, क्या नाम दिया, मत्स्यावतार, वो किसका पार्ट है, जो इतना बड़ा रूप धारण करता है कि सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं उसके प्रभाव में आ जाती है, उस मगरमच्छ के पेट में सारी मछलियां आ जाती हैं। इसलिए एक न्याय बना हुआ है मछलियों का, क्या मछलियों का यही न्याय है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाए, और सागर में इतनी मछलियां छोटी बड़ी मध्यम कैसी कैसी, देखने में भी कोई सुंदर कोई बड़ी काली कोई कैसी कोई बड़ी भयंकर, शार्क मछली कैसी होती है, है? कितनी भयंकर होती है, लेकिन उन सारी मछलियों को कौन खा जाता, मगरमच्छ, उस मगरमच्छ को कोई कंट्रोल नहीं कर पाता, क्या? अगर कोई कंट्रोल करता है तो कंट्रोल करने वाला वो ही एक महादेव कहा जाता है, जो स्वयं कंट्रोल नहीं करता है, उसके सर पर क्या दिखाई जाती है? गंगा दिखाई जाती है। सर पे क्यों उसे चढ़ा रखा है? जो प्यारा बच्चा होता है तो क्या करते हैं, बाप जो है उसको मारे प्यार के सर पे चढ़ा के ऐसे ऐसे खिलाते हैं। तो यही बात है, जो भगवान बाप है वो किन बच्चों को ज्यादा प्यार करता है? सेंसिबल बच्चों को। तो गंगा ने जितना सेवा की है नॉर्थ इंडिया में, इतनी सेवा किसी ने नहीं की, क्योंकि नॉर्थ इंडिया है भारत का है स्वदेश, और दक्षिण भारत बताया है, दक्षिण भारत है भारत का विदेश। जब जलमयी हुई थी तो नॉर्थ इंडिया का ही हिस्सा बचता है और दक्षिण जो है वो सारे दक्षिण के देश समंदर के में अंदर डूब जाते हैं। इसलिए बताया, जैसे दुनिया में जितने भी धर्मखंड हैं वो सारे ही धर्मखंड जब जलमयी होती है तो सब धर्मखंड सागर के अंदर डूब जाते, सारी दुनिया में जलमयी हो गई, एक भारत खंड रहता है। ऐसे ही भारत खंड में भी भारत के दो हिस्से हैं, एक नॉर्थ इंडिया एक साउथ इंडिया। जो नॉर्थ इंडिया है उसी का कोई हिस्सा है जो डूबता नहीं है। क्या, कौन सा हिस्सा है? है अखंड भारत का एक ही चोटी है, संसार में प्रसिद्ध है। कौन सी चोटी है? एवरेस्ट, पूर्वी सभ्यता की प्रतीक। ईस्ट माने पूर्व, एवरेस्ट पूर्वी सभ्यता की प्रतीक। एवरेस्ट चोटी दुनिया के पहाड़ों में इतनी ऊंची चोटी है कि सारी दुनिया जलमयी हो जाती है, लेकिन वो चोटी जलमयी नहीं होती। तो कहाँ है, नॉर्थ इंडिया में या साउथ इंडिया में? है नॉर्थ इंडिया। इसीलिए बताया ब्रह्म वाक्य मुरली में है कि जब सारी दुनिया विकारों की दलदल में अच्छी तरह डूब जाती है, क्या सिर्फ है चोटी बचती है, तो बताओ कौन सी चोटी होगी? है वही ब्राह्मण चोटी। क्या, ब्राह्मणों में जो चोटी का पार्ट बजाने वाला ब्राह्मण सबसे ऊंची स्टेज, वो चोटी का ब्राह्मण बचता है जब ज्ञान की जलमयी होती है सारे संसार में। क्या, ज्ञान की जलमयी में सारा संसार डूब मरता है। अरे अब ज्ञान में डूबना चाहिए या ज्ञान में डूबना चाहिए? है अज्ञान में डूबना चाहिए, ये ज्ञान में क्यों डूब मरता है? इसलिए कि जब बाढ़ आती है दुनिया में कहीं भी जल की, तो उसमें क्या मिक्स हो जाता है? मिट्टी। वो है हद की मिट्टी, और ब्राह्मणों की दुनिया में है ये शरीर क्या है मिट्टी, देहभान ही मिट्टी है। ये देहभान की मिट्टी जो है वो सारी दुनिया में जलमयी में मिक्स हो जाती है और जब ऐसी बाढ़ आती है दुनिया में जिसमें भयंकर मिट्टी मिली हुई है तो सब प्राणी अंधे हो जाएंगे या सोझरे रहेंगे, सब अंधे हो जाते हैं। अंधों को कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता, कहां जाएं, क्या करें, कैसे करें, सब खलास हो जाते हैं। ऐसे दिखाते हैं ना शास्त्रों में, जलमयी हो गई। कौन सी जलमयी है? अज्ञानता की जलमयी कहे, उसे ज्ञान की जलमयी नहीं कहे। ज्ञान वो जिसमें मिट्टी का देहभान का एक अंश मात्र भी न हो, वो है ज्ञान। जैसे दूध का भरा हुआ घड़ा है, प्योर दूध, और उसमें सर्प का आधा बूंद डाल दो, क्या, अच्छा आधा नहीं, चौथाई बूंद ही डाल दो, तो क्या हो जाएगा? सारा गंदा हो जाएगा। ऐसे ही ये ईश्वर का दिया हुआ जो ज्ञान जल है, उस ज्ञान जल में अगर देहभान का एक टीपा भी मिक्स कर दिया है तो क्या हो जाएगा? अज्ञान हो जाएगा कि ज्ञान रहेगा? अज्ञान हो जाता है। देखा होगा ज्ञान जल का दान करने वाले, ज्ञान जल का दान करते हैं तो जिसको दान करते हैं उसके सामने ज्ञान दान करते समय कुछ न कुछ देहभान में आते हैं या नहीं आते हैं? है? बोलो, कुछ न कुछ देहभान जरूर आ जाता है। क्यों आ जाता है? इसलिए आ जाता है कि ये ज्ञान सुनाते सुनाते रमक में ऐसे आते हैं कि भूल जाते हैं ये ज्ञान हमारा नहीं है, ये ज्ञान उसका दिया हुआ है। तो देहंकार में आकर के थोड़ा भी देहंकार अगर ज्ञान में मिक्स कर दिया तो क्या हो गया? वो है विष हो जाता है। वो विष है बढ़ता जाएगा, सारे घड़े में फैल जाएगा। तो सभी ब्राह्मण अपने जीवन में देखें कि क्या हम ज्ञान सुनाते हैं तो आंखें कभी तुर्स होती हैं या नहीं होती हैं? अगर जिज्ञासु कुछ अपोजिशन करता है तो, प्रश्न के ऊपर प्रश्न करता है तो आंखों में तुर्सपन आता है, देहभान आता है या नहीं आता है? है? आता है, बस समझ लो देहभान का अज्ञान मिक्स किया या नहीं किया है? देहभान का अज्ञान मिक्स हो गया। वो मिक्सरिटी जो है वो ईश्वर का ज्ञान नहीं रहा। अरे उसकी दी हुई चीज और उसे हमने अपना बना लिया, मैं हूं ज्ञान देने वाला, मैं जो सुनाता हूं चुपचाप सुनूं, कुछ बोलने की दरकार नहीं, कुछ प्रश्न उत्तर करने की दरकार नहीं। जैसे ब्रह्मा की औलाद कुख वंशावली देह अभिमानी ब्राह्मण, उनके संगठन में जाओ और क्लास में कुछ प्रश्न कर दो, तो तुम्हारे प्रश्न का जवाब देंगे हैं? बजाय जवाब देने के और ये आंखें लाल पीली करने, शंकर पार्टी है, उठो यहां से चलो। तो इसका मतलब देहभान आया या नहीं आया? ज्ञान समझ लिया कि मेरा ज्ञान है, मैं ज्ञानी हूं। क्या ज्ञानू बन गए? वास्तव में इस दुनिया में सबके अंदर देहभान भरा हुआ है, यहां तक कि इस दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं, मनुष्य आत्माएं हो, राक्षसी आत्माएं हो, देव आत्माएं हो, सबके अंदर इस दुनिया में अभी देहभान ही भरा हुआ है। 100% आत्माभिमान किसी में नहीं आया। 100% आत्माभिमानी की निशानी क्या होगी? अरे कोई निशानी बता दी है, हैं? हैं? निराकारी माने? निशानी बता दी इच्छा मात्रम अविद्या, कोई भी इच्छा नहीं रहेगी। माना खाने की इच्छा रहेगी कि नहीं है? कुछ खाए, भूख लगी है, छटपटाने लगेंगे। कुछ पिए, प्यास लगी है, इंद्रियों का कुछ न कुछ भोग भोगे, भूख लगी है। इच्छा होगी या नहीं होगी? है, देहभान है तो इच्छा होगी। देहभान का नाम निशान नहीं है तो कोई भी इच्छा हो ही नहीं सकती। और अनुभव भी किया होगा ब्राह्मणों ने अपने जीवन में, जिन दिनों याद की अच्छी अवस्था रहती है उन दिनों भूख और प्यास और नींद क्या हो जाता है? हैं? भूख भी कम लगती, प्यास भी कम लगती और निद्रा भी कम आती। ये भूख किसे लगती है? भोगी को। क्या कोई भी इंद्रियों की भूख लगती है तो भोगी है या योगी है? भोगी है। इसलिए ब्रह्म वाक्य मुरली में बताया, योगियों की भूख बहुत सूक्ष्म होती है। क्या जितना बड़ा योगी होगा तो उसकी भूख भी कम होगी। भोगी होगा तो इंद्रियों की भूख भी जास्ती होगी। निजाम बादशाह है, 500 रानियां रखता था, उसकी कामेंद्रिय की भूख कितनी बड़ी थी, कितना खाता था। हिस्ट्री बताती है कि जब वो सवेरे को नाश्ता करता था तो जो केले है ना, उनका बड़ा लंगर पका हुआ पूरा सामने रख दिया, आप कहीं खा, सारा सफाचट, इतना खाता था नाश्ते में ही, इतना खा जाता था। तो भोगी था कि योगी था? भोगी था। भोगी को भूख भी ज्यादा लगती, भोगी को नींद भी ज्यादा आती, और भोगी के जो भी इंद्रियां हैं, 9 द्वारे हैं शरीर में, कितने द्वार? 9 द्वार हैं। 9 द्वारों में से ज्यादा गंध निकलेगी। तो देखो निशानी बता दी योगी की, क्या क्या पहचान? इच्छा मात्रम अविद्या। माने इस दुनिया में कोई इच्छा नहीं, ऐसी आत्मा एक ही है जो सदा काल है। इस सृष्टि पर जब भी आती है पार्ट बजाती है, और जितने काल भी पार्ट बजाती है क्या उसको कोई इच्छा नहीं। कौन? नहीं, शिव बाबा। तो शिव बाबा जब कहा जाता है तब इच्छा मात्रम अविद्या बनता है। शिव बाबा कहे जाने से पहले वो सिर्फ मनुष्य सृष्टि का बाप था कि मनुष्य सृष्टि का बाबा था? है? बाप था, बाबा था ही नहीं। बाबा का मतलब है कि दुनिया में जितने भी धर्म के लोग हैं उनका बाप धर्म पिता है। क्या? हर धर्म के फॉलोअर्स का बाप धर्म पिता, और धर्म पिता का भी बाप, जितने भी धर्म पिताएं हैं उन सब का बाप प्रजापिता आदम, उसको कहेंगे बाबा। क्या? बापों का भी बाप, वो हुआ धर्म पिता, जिसका कोई बाप नहीं साकार में। साकार मनुष्य सृष्टि में उसका कोई बाप नहीं, कोई जन्म देने वाला नहीं। न उसको जन्म देते कोई ने देखा, न उसकी मृत्यु होते कोई ने देखी।
मृत्यु भी नहीं होती, ऐसी संपन्न स्त्री धारण कर लेता। लेकिन वो इस सच्चे रूपी रंगमंच पर सदा काल ऐसा पाठ नहीं बजाता। कैसा पाठ?
संपन्न है, संपन्न
सदाकाल इच्छा मात्रम अविद्या। पुरुषार्थी जीवन में इच्छाएं होती हैं या नहीं होती हैं? है? जो नजदीक रहेंगे वो जानेंगे, जानेंगे कि नहीं? नजदीक रहने वाले जान जाएंगे कि इसको इच्छा होती है या नहीं होती। दूर दराज
जाने या ना जाने, तो बताया उसकी पहचान एक बता दी। एक तो इच्छा मात्रम अविद्या, दूसरी पहचान क्या बताई? इस दुनिया की जो भी मनुष्य आत्मा उसको देखेगी, चाहे देव आत्मा क्यों न रही हो और चाहे वो राक्षसी आत्मा क्यों न हो, रावण जैसी, कंसी जरासिंधी जैसी, ऐसी आत्मा भी संसार की उसको इन आंखों से देखेगी तो देखने मात्र से ही बोलेगी मेरा बाप आ गया, सारी सृष्टि का बाप आ गया। सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नहीं, सारी दुनिया का बाप है। क्या? एक का नहीं है, सब का बाप। इन आंखों से देखेगा तो बोलेगा, ऐसे नहीं तीसरी आंख से देखे। किन आंखों की बात बताई? इस स्थूल आंखों से भी देखेगा और उसको पहचान हो जाएगी, इतना प्रभावित हो जाएगा। जैसे धर्म पिताएं आते हैं, आते हैं ना, बुद्ध आया, इस दुनिया में बुद्ध को उस स्टेज में जिसने देखा, जिसकी यादगार आज भी बुद्ध के चित्र बने हुए हैं, उस चित्र में क्या चरित्र दिखाते हैं, उस चित्र में कोई खासियत दिखाते हैं, हैं? हाँ, वो निराकारी स्टेज चेहरे से झलकती है। क्या वो निराकारी स्टेज परसेंटेज की स्टेज है या 100% स्टेज है? 100% है। अगर 100% निराकारी स्टेज रहे तो सारी दुनिया उसे भगवान मानेगी, या कि कुछ मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे, है सारी दुनिया मानेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं, वो जो भी धर्म पिताएं आते हैं, जिस देहधारी देव आत्मा में प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश होने के बाद क्या होता है, हैं? हाँ, प्रवेश होने के बाद जिस देहधारी में प्रवेश करते हैं वो उतरती हुई आत्मा है सस्य रूपी रंगमंच पर, या चढ़ती स्टेज वाली आत्मा है, है? ये सब बंद कर दो, सबका बुद्धियोग खींच लेते हैं और बात सुनने ही नहीं देते हैं। जैसे ही प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के साथ ही साथ उस आत्मा में शूटिंग काल में क्या उस आत्मा ने रंगमंच पर शूटिंग काल में अपनी अंतिम स्टेज की पुरुषार्थ का जो पार्ट बजाया था उसमें देहभान रह जाता है या नहीं रह जाता है, है? बुद्ध धर्म पिता की आत्मा में है? रहता है कि नहीं रहता है? क्या देहभान रह जाता? ये देहभान रह जाता कि वो धर्म पिता की आत्मा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जब शूटिंग का पार्ट बजाती है, भगवान का पार्ट बजाने वाले के सन्मुख भी आती है, तो भी पहचान नहीं पाती। क्यों नहीं पहचान पाती है? देहभान के कारण नहीं पहचानती। इतना जबरदस्त देहभान होता है जन्म जन्मांतर का, जब से बुद्ध धर्म का पार्ट बुद्ध नाम का पार्ट बजाया तब से लेकर के कलयुग के अंत तक जितने भी जन्म लिए उसमें अति का देहभान भरा रहता है। क्या अहंकार ज्यादा रहता है अपने धर्मावलंबियों के बीच में, या अपने धर्मावलंबियों के बीच किसी के मुकाबले कम अहंकार रहता है देह का? ज्यादा देह अहंकार रहता है। तो वो देह अहंकार जो है वो उस बाप को, कौन से बाप को, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, उसको पहचानने ही नहीं देता। और अंतिम पुरुषार्थ की स्टेज में भी वो देह अहंकार नहीं जाता, जो साकार को भगवान मान सके। किसको भगवान मान सके, हैं? साकार को, क्योंकि अकेला साकार भगवान हो ही नहीं सकता। भगवान कौन हो सकता है, जो साकार भी हो और निराकार भी हो और इस सच्ची रूपी रंगमंच पर सदा काल हो, क्या कभी निराकार हो कभी निराकार न हो, कभी साकार हो कभी साकार न हो, नहीं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो आत्मा जब तक रहे तब तक साकारी और निराकारी दोनों एक ही शरीर में पार्ट बजाए। हाँ, जो निराकारी आत्मा है कभी तामसी पार्ट बजाती है और कभी सात्विक पार्ट बजाती है। इतना तामसी पार्ट बजाती है कि सारी मनुष्य सृष्टि का बाप साबित हो जाए। भावना नाम की कोई चीज नहीं। इतना बड़ा योगी कि जिसके योग के सामने दुनिया की कोई भी हस्ती टिक न सके। सांप के शरीर का पराभव कर दे। जिसे कहा जाता है महाकाल, कालों का भी काल। काल किसको खाता है? आत्मा को खाता है या शरीर को खाता है? शरीर को खाता है। तो दुनिया के जितने भी शरीर हैं सब सब काल के गाल में चले जाते हैं। उस महाकाल को वो धर्म पिताएं नहीं पहचान पाते। तो उनके देहभान देह अहंकार को खत्म करने के लिए फिर धर्मराज की सजाएं निधि हुई। सजाएं खाते हैं तो पदवी नीचा हो जाता है। तो जितने भी धर्म पिताएं हैं भले अपने धर्म में सबसे ऊंचे हैं, उनके धर्म में जितने भी फॉलोअर्स हैं वो उनको बड़ा मानेंगे, लेकिन इस संसार में आज से अंत तक पार्ट बजाने वाले नहीं हो सकते। तो पता चल गया कि वो निराकार को सिर्फ याद करते हैं या साकार को भी याद करते हैं? हैं? किसको याद करते हैं? हाँ, माने स्वेच्छा से जब तक याद करेंगे वो निराकार को ही याद करेंगे, साकार को भगवान नहीं मानेंगे। पिता ही होगी, धर्मराज के डंडे खाएंगे, फिर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी क्या करे? वो तो मजबूरी हो गई। उस समय मानते लास्ट में किसको? बाप को, जो साकार भी है और निराकार भी है। तो बुद्ध में जो निराकारी स्टेज है वो खींच खींच के निराकार को याद करते हैं, और हम बच्चों की स्टेज कैसी है? खींच खींच के निराकार ज्योति बिंदु को याद करते हैं कि हमारा अभ्यास पड़ा हुआ है जन्म जन्मांतर का साकार को याद करने का है। साकार को याद करने का हमारा भी अभ्यास पड़ा है, लेकिन हम जिसके अभ्यासी हैं, जिसके संग के रंग में 63 जन्म ज्यादा रहे हैं, 21 जन्म तो रहे ही है, तो वो हमें सहज सहज याद आता है साकार, और हमारी बुद्धि में बैठ जाता है कि साकार में वो निराकारी स्टेज वाला एक ही आत्मा है, बाकी वो जो है वो सदाकाल साकार में नहीं होता। कौन? शिव। वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब संगम में शूटिंग पीरियड में आता है तब ही निराकार साकार में रहकर पार्ट बजाता है। बाकी 5000 साल सिर्फ निराकार या साकार के साथ सिर्फ निराकार, तो उसकी तो बात ही छोड़ दो, वो तो तुरीय है, उसके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, वो जिसमें प्रवेश करता है वो साकारी भी है इस सृष्टि पर और निराकारी भी है। तो उसको दूसरे धर्म के लोग, दूसरे धर्म के धर्म पिताएं नहीं पहचान पाते। हाँ, जो भारतवासी उन धर्म पिताओं के धर्म में कन्वर्ट हो गए थे, हिस्ट्री में कन्वर्ट हुए ना भारतवासी, वो ही आत्माएं अंतिम जन्म में ब्राह्मण बनती है, और ब्राह्मण बनकर के जैसे वहां कन्वर्ट हुए थे वैसे इधर कन्वर्ट हो जाते हैं, और साकार में निराकार को याद करते हैं। तो पहचान का तरीका उनका क्या हुआ? बौद्ध धर्म में जो कन्वर्ट होते हैं वो कौन सी आत्माएं हैं जो महात्मा बुद्ध को साकार भगवान के रूप में इस संसार में साकार पार्ट पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच में हीरो मान के बैठ जाती है? उनसे बड़ा कोई साकारी आत्मा होती ही नहीं, वो उनके फॉलोअर्स हैं। क्या देखते हैं? हैं? उन धर्म पिताओं में उस टाइम पर क्या देखते हैं जो पहचान लेते हैं कि यही हमारे धर्म पिता है? निराकारी स्टेज को देखते हैं। वो निराकारी स्टेज उस समय में जब महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया था, लंबे समय तक वो निराकारी स्टेज किसी में नहीं देखते इस संसार में। इस मनुष्य सृष्टि का जो हीरो पार्टधारी है वो भी निराकारी स्टेज में नहीं देखने में आता, क्योंकि वो तो गुप्त पार्टधारी है। क्या संसार में अपने को प्रत्यक्ष करता है? है? गुप्त पार्ट में जाता है। क्यों? क्यों? अरे शूटिंग पीरियड में भी गुप्त पार्ट बजाया होगा तो ब्रॉड ड्रामा में भी गुप्त ही रहेगा, या किसी को पहचान देगा? है? गुप्त ही रहता है, संसार में उसे कोई भी नहीं पहचानता। तो गुप्त रहना अच्छा या संसार के सामने अपने को प्रत्यक्ष करना अच्छा है? ज्यादा मजा किसमें है? गुप्त रहने में मजा। सेवा भी करो, चाहे तन की सेवा करो, चाहे धन की सेवा करो, चाहे मनसा के संकल्पों की सेवा करो, व्यक्त मत करो। क्या? कि हमने ये संकल्प चला के सेवा की, हमने इतना धन दिया, हमने इतनी तन की सेवा की, नहीं, अपने मुख से कभी भी व्यक्त नहीं करना चाहिए। किया और मुख से बोल दिया, खत्म हो गया। दिया हुआ दान जिसको दिया वो जाने, लेने वाला जाने और देने वाला जाने, दो के अलावा कोई भी अगर दान की बात को जान लेता है तो उस दान की शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए गाया हुआ है गुप्त दान महाकल्याण। तो बताया कि इस संसार में वो व्यक्ति कौन है जो अपने देह अहंकार को अंत तक टक्कर देता है। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक आदि इतनी टक्कर नहीं लेते। जगत पिता के साथ जितनी टक्कर वो आत्मा लेती है। कौन सी आत्मा है? हैं? जगदम्बा। क्यों इतनी ताकत कहां से आई? हैं? बाप ने एड़ी चोटी की ताकत लगा के वो ताकत उसमें डाल दी। जो ताकत हर पुरुष इस दुनिया में जिसको परिवार बनाने के लिए माता के रूप में चुनता है उसमें सारी ताकत लगाता है या नहीं लगाता है? एड़ी से लेके चोटी तक की सारी पावर लगाता। धन भी तेरा, दिल भी तेरा है और तन भी तेरा। ये परंपरा कहां से शुरू हुई, किसने शुरू की है? किसने शुरू की है? शिव बापू को तो अपना तन ही नहीं है, तो तन की ताकत कहां से देगा? तन है, है? जब तन ही नहीं तो तन से कमाया हुआ स्थूल धन भी नहीं। तन भी स्थूल, तन से कमाया हुआ धन भी स्थूल, तो देगा कैसे? किसकी बात है? हैं? हाँ, वो निराकार जिसमें प्रवेश करता है उसके पास जो ताकत है, निराकार के पास निराकारी ताकत होगी कि साकारी ताकत होगी? क्या ताकत? ज्ञान धन की अकूट जो संपत्ति है उसके पास, सच्चाई, वो उसमें डालता है जिसके द्वारा उसे नई दुनिया की रचना रचनी है। किसके द्वारा रचनी है? माता के द्वारा। उस पर फिदा होता है तो बोलता भी है, मैं भारत पर आकर के फिदा होता हूं। क्या? भारत पर क्या बनता हूं? आशिक होता हूं। तो उसमें इतनी ताकत आ जाती है। किसमें? किसमें ताकत आ जाती है? मनुष्य सृष्टि के बाप में ताकत आ जाती है। कौन सी ताकत? कौन सी ताकत? सत्य की ताकत। सत्य कहते हैं ज्ञान को, ज्ञान माना ही सत्य, असत्य का ज्ञान नहीं, काहे का ज्ञान? सत्य का ज्ञान। इसलिए गीता में कहा है, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इह माने संसार में ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज नहीं, और दुनिया के सारे कार्य पवित्रता से ही होते हैं। ज्ञान है ईश्वरीय ज्ञान, मनमत का ज्ञान नहीं, कोई मनुष्य मत का, धर्म पिता का ज्ञान नहीं। किसका ज्ञान? ईश्वर का ज्ञान। ईश माने शासन करना, वर माने श्रेष्ठ। जो इस दुनिया में आकर के सबसे जास्ती श्रेष्ठ शासन करता है। क्या? कैसा श्रेष्ठ शासन है? कैसा श्रेष्ठ शासन? दुनिया में जितने भी देश हैं, जितने भी राज्य हैं, जितने भी वहां के राजाएं हैं, उन राजाओं ने डंडे के बल पर राज्य किया, सेना रखी, मिलिट्री रखी, पुलिस रखी, पुलिसिया ताकत के आधार पर शासन करते हैं ना, हिंसा करते हैं या नहीं, हिंसा की ताकत। और वो जब इस सृष्टि पर आता है तो कोई के ऊपर किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं, यहां तक के हर आत्मा को स्वतंत्र छोड़ता है, अर्जुन को भी स्वतंत्र छोड़ दिया। क्या तू मेरी बात माने, न चाहे तो न माने। हाँ, वो रथ लेता है, क्या क्या चाहिए, अरे साजन को क्या चाहिए हैं? रथ चाहिए। सुंदरता काहे में होती है, हैं? सुंदरता जो आत्मा दिखाई ही नहीं पड़ती उसकी सुंदरता देखने में आएगी, या जो देखने में आता है उसकी सुंदरता दिखाई देगी, हैं? देखने में रथ आता है तो वो सुंदरता दिखाई देती है, और वो सुंदरता भी किसमें जास्ती आएगी, किसमें कम आएगी, है? किसमें आएगी, है? वो सुंदरता जिसने जितना ज्ञान उठाया होगा, सच्चाई उठाई होगी उसकी दी हुई, और इस दुनिया में जो सदा सत्य है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, चारों युगों में सत्य है, इस दुनिया में लोप नहीं होता, भले गुप्त रहता है लेकिन रहता जरूर है, उसको पहचान लिया तो वो ही सबसे जास्ती सुंदर है। क्या सबसे ज्यादा सुंदर कौन? सत्यम शिवम सुंदरम। किसको पहचान लिया है? सत्य क्या, क्या सत्य पहचान लिया है? ज्ञान। क्या क्या ज्ञान पहचान लिया? ज्ञान मिल गया ना, मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाप बिंदु, हो गया ज्ञान। क्या ज्ञान? आत्मा का ज्ञान, तो बस हो गया ना सब कुछ, बहुत सुंदर बन गए है? साकार में निराकार। अरे किस साकार में निराकार है? यही तो मुख्य बात है जानने की। क्या इस मनुष्य सृष्टि में वो कौन सा साकार है जो उस सत्य ज्ञान को 100% अपने जीवन में धारण कर लेता है? क्या वो एक ही बाप है जिसका कोई बाप नहीं, परंतु वो निराकार है, वो जिसमें प्रवेश करता है वो साकार भी है और निराकार भी है, तो जो साकार और निराकार दोनों है उसमें वो आकर के सारी सच्चाई, सारा ज्ञान, सारी जानकारी दे देता है। तो जिसको सारी जानकारी मिल गई वो हो गया जनता पार्टी का मुखिया। क्या हो गया? पता है दुनिया में भी जो जनता पार्टी बनी थी उसके मुखिया का नाम क्या था, बनाने वाले का नाम है जय प्रकाश नारायण। वो तो हद का आदमी था है, सत्य रूपी रंगमंच पर थोड़े समय पार्ट बजाता है, हद की जनता पार्टी, हद का उसका बनाने वाला। यहाँ तो है बेहद का जय प्रकाश नारायण, जो सतयुग के आदि से लेकर के आत्मा की रोशनी व्यक्त होती है, त्रेता में भी व्यक्त होती है, द्वापर में भी व्यक्त होती है, कलयुग में भी वो आत्मा की रोशनी व्यक्त करता रहता है। जैसे सूर्य सदा रोशनी देता है या कभी देता है कभी नहीं देता है, सदा रोशनी देता है, ऐसे वो हीरो पार्टधारी है, हीरा, हीरे में से रोशनी सदैव निकलती है या नहीं निकलती है, सदैव रोशनी निकलती है। तो ऐसे ही वो पार्टधारी है जो इस सत्य रूपी रंगमंच पर ऐसा सदा पार्ट बजाता है कि सदा ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाला है, इसलिए उसका नाम भारत। कहाँ आता हूँ, भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने रहने वाला, जो सदैव ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाला है। क्या कहते हैं, ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली, ठीक है, निकली निकली ना, तो फिर ब्रह्मा वाणी कही जानी चाहिए, उस वाणी का नाम क्या होना चाहिए है, ब्रह्मवाणी। लेकिन ब्रह्मवाणी नाम नहीं है, क्या नाम है, वेदवाणी, वेद व्यास की वाणी। क्या, किसकी वाणी, वेद व्यास की वाणी। वेद माने जानकारी, वेद माने जिनमें जानकारी भरी हुई है, क्या उन वेदों में भी सर्वप्रथम वेद है भगवत गीता, क्या भगवत गीता, श्रीमद भगवत गीता, जो भगवान ने पहले पहले सुनाई और जिसके द्वारा सुनाई उसका नाम भी आज गीता में रखा हुआ है। क्या नाम है, व्यास प्रसादार, व्यास की प्रसन्नता से वो मिली वाणी। तो वो ही व्यास वाली आत्मा, भी माने विशेष, आस माने बैठ गई, विशेष रूप से विशेष कार्य के लिए बैठ गई। किस कार्य के लिए बैठ गई है, ज्ञान देना और ज्ञान अर्जन करना, ज्ञान अर्जन करना, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, यही उसका धंधा है। जो बाप का धंधा सो बच्चों का धंधा। तो वो पहला पहला ब्राह्मण कहा गया, वेदों में भी उसी का नाम विख्यात, वेदों में भी जो सर्वप्रथम है भगवत गीता उसमें भी उसका नाम विख्यात। और वेदों की जब व्याख्या हुई, वेदों की ऋचाओं की, तो बने आरण्यक, माने जंगल में रह करके जो ज्ञान तैयार किया गया उसका नाम पड़ा आरण्यक। फिर विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने उसकी व्याख्या की, तो बने शतपथ ब्राह्मण वगैरह वगैरह। फिर उनकी भी व्याख्या हुई तो बने उपनिषद। क्या, उप माने ऊपर, उप माने ऊपर, निषद माने बैठना, ऊंची स्टेज में जो जो बैठे उन्होंने वो उपनिषदीय ज्ञान प्राप्त कर लिया। ऊंची स्टेज माने याद की स्टेज। क्या शूटिंग कहाँ होती है? यहाँ ब्राह्मणों की संगमी हुई दुनिया में हम जितना याद की ऊंची स्टेज में बैठते हैं तो हमारी बुद्धि निराकार को याद करने से, सूक्ष्म को याद करने से सूक्ष्म बुद्धि बनती है या साकारी बुद्धि बनती है? सूक्ष्म बुद्धि बनती है। और सूक्ष्म बुद्धि में ज्यादा ज्ञान का विस्तार होगा या भैंस बुद्धि में ज्यादा ज्ञान का विस्तार होगा? है, सूक्ष्म बुद्धि में ज्ञान का विस्तार बहुत होता है। तो ये है रहस्य उपनिषदों का। उप माने ऊपर, निषद माने बैठे, माने गुरुओं के पास बैठ करके जिन शिष्यों ने ऊंची स्टेज में वो ज्ञान प्राप्त किया वो उपनिषदीय ज्ञान हुआ, और फिर उनकी भी व्याख्या निकली, वो पुराण निकले। पुराणों में सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? पुराणों में सबसे बड़ा पुराण महाभारी महाभारत पुराण कहा जाता है। तो महाभारत पुराण जो है वो भी किसने लिखा है? व्यास ने लिखा। तो देखो महाभारत पुराण इतना कथा नहीं होती है संसार में, भारत में खास। गीता का पठन पाठन, गीता की कथा इतनी लोग नहीं ध्यान से सुनते हैं। क्या सुनते हैं? बहुत बड़े बड़े मजमे लगते हैं। वो कौन सा पुराण है? भागवत पुराण। क्या? तो भागवत पुराण कब तैयार हुआ होगा असलियत में? है क्या द्वापर युग में ऋषियों मुनियों ने लिखा है, या उसकी शूटिंग हुई थी कभी? है संगम युग में उसकी शूटिंग होती है, भाग भाग करके भगवान के पास आती हैं। क्या बड़ा बवंडर मचाते हैं उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार, उनके गांव वाले, गवर्नमेंट के लोग। और जीत किसकी होती है? है किसकी जीत होती है? है अरे भाग के आने वालों की जीत होती है या जो विरोध करते हैं उनकी जीत होती है? भाग के आने वालों की जीत होती है। उनको किसने भगाया है? अपने आप कोई भागता है क्या? किसने कोई होगा भागना भगाने वाला है? उनको भगाने वाला है भगवान की मुरली। क्या? भगवान की बजाई हुई बांसुरी। कौन सी बांसुरी? काठ की? नहीं, काठ की बांसुरी तो सतयुग का कृष्ण बजाता है संगम युग में। क्या? क्योंकि संगम युग में जो सतयुग का कृष्ण पार्ट बजाता है वो है दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा, कठ बुद्धि। कैसी बुद्धि? काठ की बुद्धि, काठ की मुरली चलाता है। लेकिन भगवान काठ की मुरली चलाएगा या चैतन्य मुरली चलाएगा? चैतन्य ज्ञान की मुरली चलाता है, ज्ञान की बांसुरी सुनाता है। काठ की बांसुरी की बात नहीं है, काठ की बांसुरी स्थूल रूप में बड़ी मीठी लगेगी, सुरीली आवाज सुनाई पड़ेगी, लेकिन अर्थ है? जो बांसुरी बजाने वाले होते हैं कितनी मीठी मीठी बांसुरी बजाते हैं, सुनने वालों को ऊपर ऊपर बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन कुछ अर्थ निकलता है? है, अब तो कुछ भी नहीं। लेकिन भगवान वो बांसुरी काट की नहीं बजाता, वो ऐसी बांसुरी बजाता है ज्ञान की जिसका अर्थ निकलता है गहरा, और उस गहरे अर्थ को तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया में और कोई नहीं समझते। लेकिन नंबर बार तो जिन बच्चों ने उस बांसुरी को समझा है वो बांसुरी काठ की नहीं है, क्या गुह्यार्थक है। गुह्यते गुह्य ज्ञान सुनाता हूं, क्या गहराई का ज्ञान सुनाता हूं या ऊपर ऊपर की बातें सुनाता हूं। गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, गुह्यते गुह्य राज सुनाता हूं। उस गुह्यते गुह्य राज को जो सुनते हैं वो संसार में ऊंचा पद पाते हैं राजाओं का, क्या। लेकिन जो सुनते तो हैं लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में धारण नहीं कर पाते, क्या। सुनते तो हैं लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में जल्दी धारण नहीं कर पाते। माना धारण करने का मतलब क्या है, धारण करना माने ज्ञान को धारण करना माने बाप को पहचान लेना, बाप को जान लेना, बाप को मान लेना, बाप की मत पर चल पड़ना और प्रैक्टिकल जीवन में चलना, उसको कहेंगे ज्ञान को स्वीकार कर लिया। लेकिन जो धर्म पिताएं होते हैं, देह अभिमानी धर्म पिताएं, वो ऊपर ऊपर की सारी बातें उठाएंगे लेकिन ज्ञान के गुह्य राज को नहीं समझ पाते। गुह्यात गुह्य तरम ज्ञानम, जो गुह्य से गुह्य पार्ट धारी है, गुप्त पार्ट बजाने वाला है, क्या कैसा गुप्त, कैसा गुप्त है। साधारण तन में आता हूं, कैसे तन में आता हूं, साधारण बड़े सन्यासी विद्वान पंडित आचार्य के तन में नहीं आता हूं, बड़े राजा महाराजा गोरे चिट्ठे बड़ी पर्सनालिटी में नहीं आता हूं, किसमें आता हूं, साधारण तन में आता हूं। जिस साधारण तन वाले उस क्षेत्र को जिसे भगवान ने कहा एदम शरीरम क्षेत्रम, ये जो रथ है वो धर्म क्षेत्र है, कर्मों का क्षेत्र है, क्षेत्र माने युद्ध क्षेत्र। तो इस युद्ध क्षेत्र में, इसे यज्ञ कुंड में सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी, क्या कौन सारी दुनिया भस्म हो जाएगी, क्या आत्मा भस्म हो जाएगी, सारी दुनिया की आत्माएं भस्म हो जाएंगी, नहीं क्या भस्म हो जाएंगे, सारी दुनिया के शरीर भस्म हो जाएंगे। कोई पहले ही भस्म हो जाएंगे और कोई बाद में भस्म हो जाएंगे। तो अब बताओ वो शरीरधारी कौन, वो धर्म पिता कौन, धर्म पिताएं झूठे देहधारी धर्म पिता है या सच्चे हैं। तो सबसे झूठे से झूठा धर्म पिता कौन है, बम्मा
हैं
मबब ब्रह्मा। अरे ब्रह्मा की बात क्यों कहते हो? ब्रह्मा तो बेचारा बाद में है, बाद वाली पीढ़ी है या मनुष्य सृष्टि की पहली पीढ़ी है? हैं? तो बाद वाली पीढ़ी की बात बाद में होगी। इस मनुष्य सृष्टि में आदिकाल को पकड़ो ना, कौन सा युग है? संगम युग। उस संगम युग में वो आत्माएं कौन है जो कोई जल्दी पहचान लेती है और कोई बाद में पहचानेगी? मूल को पकड़ना चाहिए ना। जैसे दुनिया में आजकल रिसर्च स्कॉलर होते हैं क्या, तो उनको ये सिखाया जाता है कि मूल को पकड़ो। क्या? एकदम गहराई में चले जाओ, मूल को पकड़ेंगे तो सच्चाई मिलेगी। तो ऐसे ही इस दुनिया में वो देहधारी धर्मगुरु का नाम बताओ जो दुनिया का बड़े से बड़ा बेहद का गुरु भी बनता है, देह अहंकारी भी बनता है, हैं? और देहधारियों के ऊपर कंट्रोल भी करता है, हैं? कौन? प्रजापिता जो शंकर का पार्टधारी है, जो बेचारा जिसके यादगार में माथे पर ताज भी नहीं दिखाते, क्या उसको राजाई का ताज होता है? होता है, हैं? राजाई करता ही नहीं किसी के ऊपर। उसकी तो जिंदगी का नारा है स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो। तो किसी के ऊपर कंट्रोल करता है क्या? हैं? वो कहाँ कंट्रोल करता है? वो बड़े से बड़ा देह अहंकारी कहाँ है? है देह अहंकारी? अरे धर्म पिताएं दुनिया को कंट्रोल करते हैं। क्राइस्ट 250 करोड़ मनुष्यों को बाप के रूप में कंट्रोल करता है। करता है कि नहीं है? करता है। तो देखो वो कंट्रोलर बड़ा या छोटा है धर्म पिताओं के बीच में? है बड़ा कंट्रोलर हो गया ना संख्या के हिसाब से, बड़ा कंट्रोलर हो गया। लेकिन बाकी धर्म पिताएं इतना कंट्रोल नहीं करते, लेकिन उसका भी कंट्रोलिंग पावर इतनी बड़ी नहीं है कि 500 करोड़ को कंट्रोल कर ले। तो वो देहधारी का नाम बताओ, हैं? हैं? हाँ, उसका नाम ही है जगदम्बा, सारे जगत की अम्बा। सारे जगत में जितने भी धर्म पिताएं हैं उन सब धर्म पिताओं के फॉलोअर्स को भी कंट्रोल करती है। इसलिए सिखों में गायन है राज करेगा खालसा। किस आधार पर कंट्रोल करती है? वाचा के आधार पर कंट्रोल करती है या दृष्टि के आधार पर कंट्रोल करती है? वाचा के आधार पर कंट्रोल करती है। आज की दुनिया के जो भी कंट्रोलर हैं, शासक हैं, वो किसको फॉलो कर रहे हैं?
है
माने व्यक्ति बताओ किसको फॉलो कर रहे हैं आज के दुनिया के जो शासक हैं देश देशांतर में वो किसको फॉलो कर रहे हैं जगदम्बा को फॉलो कर रहे हैं जगदम्बा वाचा चलाने में सबसे ज्यादा अव्वल नंबर वन वाचा की देवी सरस्वती कही जाती है वाक देवी क्या कहते हैं उसको वाचा की वाक माने वाचा वाचा की देवी तुलसीदास ने भी रामायण में यही लिखा है आज की कलयुग की दुनिया में पंडित सोई जो गाल बजावा क्या कौन है पंडित कौन है विद्वान कौन है बड़ा शासक जो गाल बजाना अच्छा जानता है तो दुनिया में देखो लो जितने भी देश हैं जितने भी नेताएं हैं दुनिया के बड़े बड़े जो कोई राष्ट्रपति बन के बैठे हैं कोई प्रधानमंत्री कोई क्या बन के बैठे हैं अपने अपने देश को कंट्रोल कर रहे हैं क्या ताकत है उनके पास है कोई भाषण बाजी आज की दुनिया में भाषणबाजी को ही सबसे ऊंची ताकत माना जाता है नहीं है भाषणबाजी झूठी या सच्ची है झूठी भाषणबाजी करते हैं कि हम देश को जन्नत बनाएंगे पैराडाइज बनाएंगे भारत में राम राज्य लाएंगे झूठी वाचा चलाई या सच्ची वाचा चलाई हैं? झूठी वाचा चला इतना झूठ कि झूठ ही झूठ मेरे ही झूठ सच की रत्ती नहीं ये ब्रह्म वाक्य है मुरली का कलयुग के अंत में जो दुनिया में राजाइयां चलती हैं तमो प्रधान राजाइयां वो राजाएं और वो राजाइयां किसको फॉलो करने वाले हैं है जगदम्बा को फॉलो करते हैं जो जगदम्बा बीज रूप आत्माओं की दुनिया में लास्ट मणका है या फर्स्ट मणका है लास्ट मणका है तो लास्ट मणका दुनिया के लास्ट टाइम में राजा ही करेगा या आधे और मध्य में राजा ही करेगा ये राज है राज क्या है लास्ट को फॉलो करेंगे तो लास्ट की तमो प्रधान दुनिया के राजा बनेंगे और फर्स्ट को फॉलो करेंगे तो सतयुग के आदि में जो राजाएं हुए हैं सत्व प्रधान दुनिया के वो राजा बनेंगे क्या बनना है किसको फॉलो करना है अव्वल नंबर को फॉलो करना है या लास्ट नंबर को फॉलो करना है, है? अल्लाह अव्वल दीन कहा जाता है अल्लाह ने क्या किया अव्वल नंबर धर्म की स्थापना की और जो लास्ट नंबर है वो क्या करेगा हा? क्या करेगा अरे माला रूपी जो संगठन है आत्माओं की माला होती है ना उन माला रूपी जो संगठन है उसमें फर्स्ट मणका अल्लाह अव्वल दीन है अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करता है और लास्ट मणका है हाँ जो भी वो कैसी स्थापना करेगा है लास्ट नंबर की स्थापना करेगा थर्ड क्लास नहीं फोर्थ क्लास नहीं उसको तो नंबर ही छोड़ दो तो कौन से राज्य में जाना है कौन सी राजाई लेनी है सुखदाई राजाई लेनी है या दुखदाई रजाई लेनी है? है सुखदाई रजाई लेनी है। कि जो सुखदाई रजाई है सुख देंगे तो अंत समय कैसा होगा? सुख में मरेंगे, अंत मते सुगते। और दुख देंगे तो दुख में शरीर छोड़ेंगे, अंत मते तो अंत की दुनिया की राजाई मिलेगी। तो देखो सुख और दुख, सुख देने वाला कौन और दुख देने वाला कौन? ब्रह्मा कुमारियों से पूछो वो कहेंगी सुख देने वाला निराकार। क्या? सुख देने वाला निराकार ज्योति बिंदु, और दुख देने वाला हा? ब्रह्मा कुमारियां किसको आतंकवादी समझती हैं? ओसामा बिन लादेन बेहद की दुनिया में ब्राह्मणों में है? हाँ, जो बेहद का लादेन है। क्या करता है? है वो कहता है शाम आ गई, सूरज डूब गया। क्या? अब अज्ञान अंधकार फैलने वाला है। इस अज्ञान अंधकार में मेरी बात सुनो। किसकी बात सुनो? मेरी बात सुनो। क्या सुनो? शाम आ गई, ओ शाम आ गई, सूर्य छुपने वाला है, ज्ञान सूर्य। अब अज्ञान अंधकार सारी दुनिया में फैल जाएगा। मेरी बात सुनेंगे, क्या सुनेंगे? बिन ला देन, बिना लाए दिए छोड़ूंगा ही नहीं। क्या बात, क्या बात? जो कुछ तुम्हारे पास है, आतंकवादी क्या करते हैं? हाँ? आतंकवादी क्या करते हैं? डकैतों का काम करते हैं या साहूकार का काम करते हैं? हैं? बड़े से बड़े डकैत हैं आतंकवादी। तो जो भी तुम्हारे पास है, तन की ताकत, क्या बीवी बाल बच्चे जो भी हैं, वो तन की ताकत है या नहीं? हा? अरे तन की शक्ति लगा के बच्चे पैदा किए कि नहीं है? किए तो वो सारी तन की ताकत ला के मेरे सामने रखो, कुछ अपने पास नहीं रखना है। तन की ताकत हो और तन से कमाया हुआ धन की ताकत हो वो भी मुझे दे दो। बिना लाए दिए छोड़ूंगा नहीं किसी को, तो बेहद का ला देना है। क्या? गीता में भी उसी का जिक्र है। क्या भगवान क्या कहते हैं? है क्या कहते हैं? कृष्ण मधार अर्पणम, मेरे अर्पण कर दे। तो दुनिया का सबसे बड़ा लादेन कौन हुआ? है कौन हुआ? अरे भगवान हुआ कि नहीं? दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। अरे तो दुनिया की ये बात ओसामा बिन लादेन, ये उस तेरे पर लागू होती है या नहीं? कौन कहता है तेरे? तेरे माने एक, किसने कहा है? आत्माओं के बाप ने कहा, उस एक बच्चे से कहा। क्या क्या कहा? दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं है जो तेरे पर लागू न होती हो। अगर ओसामा बिन लादेन भी है तो उस ओसामा बिन लादेन का भी बाप तू है। अच्छाइयों में भी तू है सबका बाप, और बुराइयों में भी तू है सबका बाप। सुख देने वालों में भी तू है सबका बाप, और दुख देने वालों में भी तू है सबका बाप। इसलिए ब्रह्म वाक्य मुरली में है। क्या क्या मुरली में वाक्य है? सुख की दुनिया मेरी है तो ये दुख की द्वापर कलयुगी तामसी दुनिया मेरी नहीं है क्या? है या नहीं है? इसलिए वो बड़े से बड़ा सुखदाता भी है। कौन? वो सुखदाता है। वो सुख लेता है, है? वो सुख लेता ही नहीं, वो खुद ही सुख नहीं भोगता, वो दूसरों को सुख देगा? अरे करोड़पति होगा, करोड़ का सुख भोगेगा, दूसरों को करोड़ देगा? खुद मल्टी मिलियनर होगा, मल्टी मिलियन का सुख भोगेगा तो दूसरों को देगा, बाल बच्चों को देगा? खुद ही नहीं है तो देगा कहां से? उसकी बात नहीं है ये, किसकी बात है? हैं? जिस साकार तनधारी में प्रवेश करता है। अब प्रवेश भी आधार भी कोई लुंजम पुंजम का आधार नहीं लेता। जिस नंबर का धर्म पिता आता है उसी नंबर के देवता में प्रवेश करता है। क्या कहा? जितना ऊंचा धर्म पिता होगा, जितना पावरफुल धर्म पिता होगा, उतना पावरफुल उसे आधार चाहिए, माता चाहिए, जिसका आधार लेकर के वो अपने धर्म की स्थापना करे। तो ऊंचे से ऊंचा धर्म पिता कौन है? अल्लाह बल्दी। वो ऊंचे से ऊंचा धर्म पिता है तो आधार भी किसका लेगा? है? किसका? परम ब्रह्म का आधार लेता है। परम ब्रह्म तो वो खुद ही है। वो जब आता है तो जिसमें प्रवेश करता है उसी का नाम तो देता है परम ब्रह्म। कोई अलग से है परम ब्रह्म क्या? है? हाँ ये जरूर कहा कि मैं जिस तन में आता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। जैसे दादा लेखराज पुरुष तन है, उस पुरुष तन में आता हूँ तो नाम ब्रह्मा रखता हूँ। अरे मेरे से भी बात कर लो ना। अरे कर लो, मेरे कान में भी सुना दो, हिंदी नहीं जानते इसलिए। अच्छा अच्छा तो बोला, क्या बोला? हाँ, जिस तन में प्रवेश करता है वो तनधारी मनुष्य आत्मा ही है। क्या? परम ब्रह्म, दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है। हाँ ये जरूर कहा, जिस सत्पुरुष तन में प्रवेश करता हूँ उससे अपना काम निकालने के लिए नाम देता हूँ। शास्त्रों में जो भी नाम है काम के आधार पर है कि बिना काम के हैं? जिसने जैसा काम किया वैसा उसका नाम पड़ा। तो परम ब्रह्म नाम पड़ता है, इसलिए वो एक ही तनधारी परम ब्रह्म भी है, बड़े से बड़ा ब्रह्मा भी है, पहला ब्रह्मा, और बड़े से बड़ा बाप भी है, जिसकी यादगार शिवलिंग है। वो शिवलिंग पुरुष रूप में है तो वो बिंदु है, पुरुष। बिंदु माने आत्मा, बिंदु माने आत्मा, पुरुष है। और वो बिंदु जहां रखा हुआ है, जिस आधार को लेकर बैठा हुआ है, वो आधार है माता। क्या? लिंग। वो लिंग क्या है? शरीर। तो शरीर की जो यादगार है वो माता हो गई। बच्चे का जन्म प्रत्यक्ष में देखा जाए तो प्रत्यक्ष में जन्म देने वाला आधार रूपी माता होती है या पिता होता है? है? माता होती है। माता बच्चे को प्रत्यक्ष में जन्म देती है। कोई कहता है पिता ने जन्म दिया है? नहीं जन्म दिया, माता जन्म देती है। तो इसलिए माता नाम रखा उसका, किसका? प्रजापिता का भी नाम क्या रख दिया पहले? पहले क्या चाहिए मुझे? माता चाहिए। तो वो परम ब्रह्म भी है, वो माता भी है। हाँ ये जरूर कहा कि ये तन पुरुष का है, भले माता का पार्ट बजाता है फिर भी तन पुरुष का। और पुरुष जो है वो बच्चों को जन्म दे सकता है, माता का रूप में पालना कर सकता है, करेगा? नहीं कर सकता। तो क्या करते हैं? हैं? माता का पार्ट बजाने के लिए, माता के रूप में एक्टिविटी करने के लिए कोई कन्या को निमित्त बनाते हैं। किसको? कन्या को निमित्त बनाते हैं। क्यों भाई? वो तो कहता है कि मैं जब आता हूं तो तीन मूर्तियों के साथ आता हूं। किसके साथ आता हूं? तीन मूर्तियों के साथ आता हूं। बड़ी से बड़ी मूर्ति है ब्रह्मा देव, विष्णु देव और दोनों से बड़ा महादेव, वो तो बाप हो गया। एक बड़े से बड़ी मूर्ति बाप हो गया, उसके बाद बाप को क्या चाहिए? हैं? माता चाहिए। माता के साकार रूप पर फिदा होता है या निराकार पर फिदा होता है? हैं? साकार रूप पर फिदा होता है। तो जो इस मनुष्य सृष्टि में प्रकृति पति की माता है, प्रकृति माता, प्रकृष्ठ, कृति माने रचना, जो प्रकृति पति की प्रकृष्ठ रचना है वो जड़त्वमयी है, जड़त्वमयी बुद्धि वाली या चैतन्य बुद्धि है? जड़त्वमयी बुद्धि वाली। तो वो जगदम्बा है। कौन?
जगदम्बा।
किसकी बेटी हुई? जगदम्बा बेटी है ना ब्रह्मा की, है? इस सृष्टि पे कोई था ही नहीं पैदाइश करने के लिए, पैदा ही हुई बच्ची। क्या आदि में भी बच्ची थी या नहीं थी? अरे यज्ञ के आदि में भी बच्ची थी या नहीं थी? है? बच्ची थी। और जो आदि सो अंत एडवांस में भी वो क्या थी? 76 से एडवांस ज्ञान शुरू हुआ तो 76 में वो कितने साल की होती है? इधर मम्मा ने शरीर छोड़ा उधर वो जन्म लिया। किसने? जगदम्बा का पार्ट बजाने वाली आत्मा ने। तो 76 में 10 साल की हुई ना, है? इसलिए ब्रह्मा कुमारियों ने जाने अनजाने उसका नाम रख दिया अंतिम बाला। क्या 76 में वो ब्रह्मा कुमारियों में अंतिम बाला हो गई जगदम्बा। आदि में भी बच्ची थी और अंत में भी बच्ची। 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष और प्रत्यक्षता वर्ष में कौन पैदा हुई? है? जगदम्बा बच्ची पैदा हुई। जगदम्बा बेटी हुई ना, हुई कि नहीं? है? जगदम्बा बेटी हुई। तो अब कोई था ही नहीं उसे, जब एडवांस ज्ञान की ब्राह्मणों की बीज रूप आत्माओं की नई दुनिया शुरू हुई तो उस समय और कोई था पैदाइश में? ब्राह्मणों की सृष्टि में कोई था 76-77 में? 77 हुआ संपूर्णता वर्ष, कोई था? कोई नहीं था। हाँ, वो आकर के 5-year प्लान बनाता है। कौन सा प्लान? 5-year प्लान। तो वो 5-year प्लान शुरू होता है 77 के बाद, संपूर्णता वर्ष के बाद। 78, 79, 80, 81, 82 और 83 शुरू होने से पहले ही अव्यक्तवाणी में बोल दिया। क्या बोला? 83 वर्ष आ रहा है तो 13 होना चाहिए ना, 13। अब सवाल यह है कि सन 83 तक 13 कोई नहीं हुआ? अरे हुआ या नहीं हुआ? है? अरे इतने ब्रह्मा कुमार कुमारी ज्ञान में आए, वो 13 नहीं हुए? हैं? हाँ, उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को जन्म देने वाले ब्रह्मा दादा लेखराज ने ही नहीं पहचाना उस बाप को, अपना दास दासी समझ के बैठ गया, अपना नौकर समझ के बैठ गया, उस बाप को पहचाना ही नहीं। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कैसे पहचानेंगे? पहचानेंगे? नहीं पहचानेंगे। तो वो 5-year प्लान पूरा होता है 78, 79, 80, 81, 82 और 81 में अव्यक्तवाणी में ब्रह्मा ने गुलजार दादी के द्वारा बोल दिया 83 में 13 होना चाहिए। तो वो 83 आता है और वो बच्ची कितने साल की हो जाती है? कितने साल की? 83 में कितने साल की हो जाती? 66 में पैदा हुई है, कितने साल की?
17।
उधर 6 साल, इधर 3 साल, 18 से ऊपर हो गई ना। अरे 66, 5 साल हुए और 10 साल 80 तक और 3 साल और कितने साल हुए? 18 साल हो गए ना। तो अपनी भारतीय परंपरा में अभी भी बालिग कितने साल में माना जाता है? 18 साल में। ये 18 साल की जो बालिग पने की परंपरा है भारतवर्ष में, ये पहले पहले किसने डाली है? किसने डाली? बाप ने डाली। वो बच्ची जब 18 साल की हो गई तो बाप का घर संभालती है, वो ही एक बच्ची निमित्त बनती है एडवांस ज्ञान में, ब्राह्मणों की दुनिया में। दूसरी कोई ब्रह्मा कुमारी हिम्मत नहीं करती घर संभालने का। ऐसे भी नहीं है, उस बाप के पार्ट को पहचानती नहीं है कोई, क्योंकि 83 से पहले सारा ज्ञान, चारों चित्रों का एडवांस ज्ञान हेड ऑफिस माउंट आबू में भेज दिया जाता है रजिस्टर्ड कोर्स से। तो पुराने पुराने ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या ज्ञान की गहराई को नहीं समझते हैं? अरे समझते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है। रावण जानता था क्या? अंदर से जानता था कि ये राम भगवान है, लेकिन अहंकार इतना भरा हुआ था देह का, मैं मान नहीं सकता। क्या? मैं इसे भगवान मान नहीं सकता, अगर ये भगवान है तो मेरे से टक्कर लेके दिखाए। क्या? मेरे धन बल से टक्कर लेके दिखाए, ये जंगली आदमी। क्या? कहां का रहने वाला? जंगल का रहने वाला आदमी, जंगली जानवर कहीं का है। मैं महलवानियों अटारियों में सोने के महलों में रहने वाला, सोने की दुनिया में मैं पलता हूं। लंका काहे की थी? सोने की लंका। तो इतना अहंकार चढ़ा हुआ था कि उसने भगवान को मानने से टोटल इनकार कर दिया, नहीं माना। उसके भाई ने पहचाना, किसने? हैं?
विभीषण।
हाँ, विभीषण ने जाना, दूसरे भाई ने भी जाना, कुंभकर्ण ने भी जाना। बहुत सोता था क्या? उस जब उसको जगाया जाता था ना, तो कान में बाजे बजाई जाती थी जोर जोर से, नगाड़ा बजाया जाता ही नहीं। हाँ, लेकिन इतना सच्चा था, उसने साफ साफ रावण को बोल दिया, क्या भाई जी तुमने बड़ी गलती की है, वास्तव में वो भगवान आया हुआ, भगवान को तुमने ठुकरा दिया, विभीषण ने पहचाना, तुमने ठुकरा दिया, लेकिन मैं अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करूंगा, इसलिए मैं तुम्हारा ही साथ दूंगा, कुल की लाज न जाने पाए, लेकिन अंदर से मैं उसको मानता हूं। किसको? है, भगवान को मानता हूं। तो देखो, रावण इतना बलवान, इतना प्रकांड विद्वान, इतना बड़ा ब्राह्मण माना जाता था कि जब भवसागर पार करने की बात आई तो पूजा करने के लिए सागर की, विभीषण ने राम को एडवाइस दी, इस दुनिया का सबसे बड़ा ब्राह्मण जो माना जाता है होशियार, वो रावण है, अगर सही सही सागर की पूजा करनी है तो रावण को बुलाओ। उन्होंने निमंत्रण भेजा, उसने इनकार कर दिया, नहीं आया। तो देखो, ये निमंत्रण क्या है? है, ये भवसागर पार उतरने के लिए सागर की जो पूजा की गई, ये निमंत्रण क्या है? ये संसार सागर का वो ज्ञान है चार चित्रों का एडवांस में, वो निमंत्रण वहां भेजा गया, लेकिन उसने क्या कर दिया? है, नकार दिया, नहीं आया। तो रावण जानता है, क्या रावण अकेला नहीं है, रावण के साथ माया बेटी भी है। है, कौन है उस माया बेटी का? मुर्गियों में नाम क्या रखा गया? है, कुमार का बेटी, क्या है उसका स्पष्ट नाम मुरलियों में रख दिया, कुमार का। बेटी माने रचना, बेटी माने क्या है? रचना, बेटी तो है लेकिन कैसी बेटी है? माया बेटी, दिमाग में माया भरी हुई है, किसके प्रति? बाप के प्रति। क्या, कैसी माया भरी हुई है? अमेरिका में जाती है तो वहां से बड़ी खुशी खुशी टाइटल लेकर के आती है, वर्ल्ड मदर। क्या टाइटल लेके आती है? वर्ल्ड मदर। अच्छा, बाप है वर्ल्ड का फादर, और वो क्या बन गई? वर्ल्ड मदर। तो बताओ, माया बेटी है या मदर है? है तो बेटी, लेकिन अंदर से इच्छा क्या रखती है? मैं क्या बन के रहूं? मदर माने ओमरादे मम्मा को मदर के रूप में भूल गई और खुद उस कुर्सी पे बैठ गई, तो माया बेटी हुई ना। वो माया बेटी मंद बुद्धि होती है या सॉलिड बुद्धि होती है? मंद बुद्धि का नाम है मंद बुद्धि रूपी पेट वाली, मंद उदरी। उदर माने पेट। क्या नाम रखा शास्त्र में? मंद उदर वाली बेटी मंदोदरी। वो बोल तो देती है रावण को, क्या कि किससे टक्कर ले रहे हो? वो हिसाब से तो, ज्ञान के हिसाब से तो वो भगवान तो है, उसका दिल मान लेता है, लेकिन फिर फॉलो किसको करती है प्रैक्टिकल में? हैं? रावण को फॉलो करती है। तो रावण के साथ माया बेटी भी रहती है और दोनों मिलकर के क्या करते हैं? अपोजिशन करते हैं। कब से कब तक? 76 से लेकर के कब तक है? अरे तुम बच्चों को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में कितना टाइम लगता है? कम से कम, कम से कम 40 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 50 वर्ष। तो एक के लिए 17 वर्ष बोला, बाकी 107 के लिए माला है ना, बाप के बच्चों का संगठन रूपी माला जो गले पड़ते हैं बाप के, या बाप जिन्हों गले लगाता है जिनको। तो पूरी राजधानी कब स्थापन होगी? है 28। तो जब तक पूरी राजधानी स्थापन नहीं होती है तब तक माया बेटी और रावण विरोध करेगा या नहीं करेगा? करेगा। ये विरोध करने के लिए माया बेटी युक्ति निकालती है, क्योंकि देख लेती है जो अव्यक्त वाणी में बोल दिया ब्रह्म वाक्य, क्या माया तंग आ चुकी है, माया थक चुकी है तुम बच्चों के योग बल के मुकाबले। उसका योग बल काम नहीं करता, हॉस्पिटलाइज हो जाती है लंबे समय तक, कामा में पड़ी रहती है। इतनी हठी, आखिरी शरीर छूट जाता है। सूक्ष्म शरीर धारण करने के बाद आत्मा पावरफुल हो जाती है या कमजोर हो जाती है? और ही ज्यादा पावरफुल हो गई। बुद्धि तीक्ष्ण गति से काम करती है, मन और बुद्धि दोनों, तो वो युक्ति निकाल लेती है। क्या युक्ति निकालती है? हैं? हैं? किसे? हाँ, प्रकृति, जो प्रकृष्ठ कृति है प्रकृतिपति की, जगत पिता की, जो अव्वल नंबर की सबसे पावरफुल रचना प्रकृति, उससे हाथ मिला लेती है। प्रकृति जड़ प्रकृतिपति के मुकाबले या चैतन्य जड़? इसलिए गीता में दो प्रकार की प्रकृति बताइए, क्या? एक तो है तो चैतन्य आत्मा, लेकिन बुद्धि कैसी है? जड़ तुम्हारी बुद्धि। और दूसरी वो प्रकृति जो 5 एलिमेंट के रूप में दिखाई जाती है, है भी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये पांच एलिमेंट जिन्होंने साइंस पढ़ा है वो जानते हैं कभी नष्ट होते हैं है? कभी नष्ट नहीं होते, एक कम से कम सार रूप में जरूर रहते हैं। क्या वो क्या है, वो कौन है जो सार रूप में रहते हैं? मनुष्य सृष्टि का साकार बीज जो चैतन्य आत्मा है वो आत्मा है प्रकृतिपति, जो माता का आधार लेता है, प्रकृति का आधार लेता है, शरीर का पांच तत्वों से बने शरीर का आधार लेता है, लेकिन वो सार रूप जो है प्रकृति का बिल्कुल जड़त्वमय पत्थर वो है लिंग। वो लिंग जो है वो कभी नष्ट नहीं होता। बाकी जो चैतन्य आत्मा है कौन, प्रकृति का दूसरा रूप कौन, जगदम्बा। वो जगदम्बा शरीर छोड़ती है या नहीं छोड़ती है, है? उसको भी शरीर छोड़ना पड़े, भले वो शरीर बर्फ में दबके रहेगा, क्या कहाँ रहेगा, बर्फ में दबके रहेगा, लेकिन रहेगा जरूर। पांच तत्वों में दब गया, क्या पांच तत्वों में दब गया, इसलिए जो पृथ्वी में मुर्दे को दबाने के संस्कार डालने वाले दूसरे धर्म की आत्माएं हैं, वो संस्कार डालने वाला कौन है, जगदम्बा। बाकी पिता वो क्या करता है, जो बोला है मुरली में ब्रह्म वाक्य बोला है, अब देखेंगे लाखों में से एक करोड़ों में से एक कौन निकलते हैं और कौन राख बनते हैं, अपने देवान को क्या बना दें, राख बना दें, वो भी देखें। तो बताया एक आत्मा निकलती है जो 100% अपने देवान को राख बना देती है, बाकी सारी दुनिया जगदम्बा को फॉलो कर लेती है। इसलिए मुसलमानों में, क्रिश्चियंस में, दूसरे धर्म वालों में आज भी इतनी परिपक्वता है कि उन्होंने हिंदुओं की इस परंपरा को नकार दिया। कौन सी परंपरा, जलाने की परंपरा को नकार दिया, देवान छोड़ते ही नहीं। ओम शांति।